ओम शांति। कुछ ही देर में हमारी इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रल सेशन हम प्रारंभ करेंगे। जो भी हमारे डेलीगेट्स बाहर जा रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि शीघ्र अति शीघ्र वापिस आकर अपना स्थान सभी ग्रहण करेंगे। आज नया दिन है तो नई बात करते हैं। कल चाहे जो भी हुआ हो, पर आज से एक नई शुरुआत करते हैं। आप सभी ब्रह्मा कुमारीज के इस सुंदर ऑडिटोरियम में यहाँ पर बैठे हैं, बिल्कुल ऐसी ही भासना आ रही है जैसे बगीचे के अंदर बहुत सुंदर फ्रेश फूल खिले हुए हैं। भगवान का ये बगीचा है और इस बगीचे के आप सभी बहुत ही खूबसूरत फूल हैं, और सभी फूलों को एक साथ देखकर उसकी ताजगी और उसकी सुंदरता अलग ही महसूस हो रही है। स्वयं वो परम शक्ति परमात्मा शिव पिता भी आज इस दृश्य को देखकर हर्षित हो रहा है, क्योंकि भारत ही नहीं परंतु भारत और भारत के आसपास के हमारे मित्र राष्ट्रों से भी बहुत से डेलीगेट्स यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप में से कुछ तो कल से आए हुए हैं, कुछ आज सुबह आए हैं। आप सभी इस कैंपस में आए तो मैं पूछना चाहूंगी कि जब आप इस कैंपस में यहाँ के वातावरण में आए तो आप सभी ने क्या फील किया, कुछ महसूस किया, कुछ एहसास ऐसा हुआ, क्या फील किया आप सभी ने? पीस एंड पॉजिटिव एनर्जी और नेचर की गोद में और उसकी पावर को महसूस किया जी। और कुछ? एक लाइटनेस, एक अपनापन, घर जैसी फीलिंग अवश्य। खास करके बहनें जो आई है हमारी डेलीगेट्स के रूप में, उनको तो ज्यादा फैमिली फीलिंग आई होगी, बिल्कुल मायके में आए हैं, क्योंकि कोई टेंशन नहीं नाश्ते का, न भोजन का, न किसी काम का, सब कुछ समय पर रेडी मिलता है। तो तालियों से समझ आ रहा है कि बहनें बहुत खुश हैं। तो आपका इस परिवार में संस्था की ओर से मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। न्यू विजन फॉर न्यू एरा, एक नव युग के लिए नई दृष्टि। हमारी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य ही है, जिसे हम कहते हैं एक नई स्वर्णिम सतयुगी दुनिया को लाना, इस धरती पर ऐसी दुनिया की स्थापना करना जहां आपसी प्यार, एकता, स्नेह, सहयोग, ये सारे आत्मीय गुण सभी के अंदर हो। आप सब इस कैंपस में जब आए, चूंकि आप सभी बुद्धिजीवी हैं और एक ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, तो जरूर आप सभी के मन में ये सवाल तो उठा होगा कि ऐसे आध्यात्मिक माहौल में हम जैसे इंजीनियर, साइंटिस्ट या आर्किटेक्ट्स को क्यों बुलाया गया है। क्या किसी के मन में ये सवाल उठा? हाथ उठाएंगे? नहीं उठा? अच्छा, कुछ लोग के मन में सवाल उठा और कुछ के सवाल शायद इस वातावरण में आते ही खत्म हो गए होंगे, क्योंकि हमारा ये कैंपस एक मॉडल है इस बात के लिए कि आप आध्यात्म कोई अलग फील्ड नहीं है जो कि हमें अपने फैमिली, सोशल या वर्क फील्ड से हमें अलग करता हो, परंतु इस कैंपस में हमारा उद्देश्य ही है सबको ये अनुभव कराना, ये समझाना कि चाहे हमारी फैमिली लाइफ हो, हमारी वर्क लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ यानी या सोशल लाइफ हो, परंतु आध्यात्म उन सभी से जुड़ा हुआ है। आध्यात्म अलग नहीं है, परंतु आध्यात्म हमारे लिए अति आवश्यक है। आपको मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, आपने नाम भी सुना होगा, माननीय भ्राता केवीके राजू जी, जो नागार्जुना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन थे, जिनकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, पर किसी कारण से उनकी जो इंडस्ट्री है वो काफी बैड फेज से जब गुजरने लगी, काफी क्राइसिस हुए, तो उस समय उन्होंने नेचुरली बाहर से बहुत सारे मैनेजमेंट एक्सपर्टीज को बुलाया, ट्रेनर्स को बुलाया, काफी प्रयास किए, पर उसके बावजूद भी उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली। उसी दौरान उसी बीच वो संस्था के इसी कैंपस में आए और उन्होंने उस समय आपकी ही तरह एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की और उन्होंने यहाँ के कैंपस के सारे प्रोग्राम अटेंड करने के साथ यहाँ की सारी बातों को ऑब्जर्व किया और सारी बातें देखने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, इस बात को अच्छी तरह समझा कि यहाँ पर इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी कार्य कर रहे, लेकिन नो कमांड नो कंट्रोल। शायद आपने भी इन दो दिनों में देखा होगा, सारे कार्य सुचारू रूप से रन कर रहे हैं, व्यवस्थित चल रहे, पर नो कमांड नो कंट्रोल। तब उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अध्यात्म ही वो शक्ति है, वो मार्ग है जो हमारे विजन को क्लियर कर सकता है और हमारे मिशन को पूरा कर सकता है। उन्होंने यहां से जाने के बाद इस कैंपस का जो एक हम देख रहे हैं, यहाँ की जो तरीके हैं, जो सिद्धांत है, इन सभी को मॉडल के रूप में एक्सेप्ट किया, मेडिटेशन को जीवन में अपनाया, जीवन में चेंजेस लाए, अध्यात्म को उतारा, लोगों को मोटिवेट किया और देन जैसा कि उनकी उम्मीद थी, उम्मीद से भी ज्यादा उन्होंने बहुत अधिक सफलता प्राप्त की, सक्सेस हुए। तो हमारा उद्देश्य, आप सभी यहाँ आए हैं तो आप सभी को यही समझाना, ये उद्देश्य है कि ये जो मॉडल है हमारा ज्ञान सरोवर एकेडमी, ये हमें सिखाता है वर्क लाइफ बैलेंस। ये संभव है, अध्यात्म के साथ हम अपनी फैमिली, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ, अध्यात्म को शामिल करके उसे और खूबसूरत बना सकते हैं। तो उसके लिए विजन क्या हो, मिशन क्या हो, ये हमारे आज के इनॉग्रल सेशन के हमारे जितने भी माननीय अतिथिगण हैं, गेस्ट हैं, ये इसे स्पष्ट करेंगे। तो आज के इनॉग्रल सेशन के सभी अतिथियों को हम सब की तरफ से मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप सभी मंच पर आए और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। हमारे विंग के चेयरपर्सन आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल भाई जी, विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय भारत भूषण भाई जी, साथ ही परम आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन जी जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है संस्था के, साथ ही हमारे बीच कुछ गेस्ट भी आए हैं, माननीय भ्राता संजीव कुमार जी जो न्यू दिल्ली से आए हैं TCIL से, आपसे अभी अनुरोध है मंच पर आए, माननीय भ्राता राहुल प्रशांत जी आप वडोदरा से आए हैं, आपसे भी अनुरोध है कि मंच पर आकर अपना स्थान सुशोभित करें। हमारे बीच, चूंकि हमारा अब ये प्रोग्राम नेशनल नहीं इंटरनेशनल होने जा रहा है, हमारे बीच यूके से ब्रदर नेविल वो भी पधारे हैं, तो मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। परम आदरणीय सविता दीदी जी, डॉक्टर सविता दीदी जो मेडिटेशन एक्सपर्टीज है, हमें मेडिटेशन का अभ्यास विशेष रूप से कराएंगे। हमारे विंग की वाइस चेयरपर्सन हमारी प्यारी मीठी आशा दीदी जो भिलाई से हमारे बीच आए हैं, आदरणीय पीयूष भाई जो दिल्ली से हमारे बीच आए हैं, हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, साथ ही नरेंद्र भाई पटेल जी जो वडोदरा से आए हैं, आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, हम सभी पूरी सभा आपको मंच पर देखना चाहते हैं, आपके विचारों को सुनना चाहते हैं, तो आप सभी मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें और हम सभी पूरी सभा, हम सभी जोरदार तालियों से आपका मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी संस्था की चीफ परम आदरणीय श्रद्धेय दादी रतन मोहिनी जी, जिनके दिल तो बहुत है कि हम सबके बीच आए और हम सबसे मिले, हम सभी को अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से कृतार्थ करें, परंतु उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक न होने के वजह से हमारे बीच अभी तो वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम सभी का दृढ़ संकल्प रहा, दृढ़ इच्छा रही, तो जरूर वो हम सभी को अपना दर्शन लाभ देंगे। हम इसी उम्मीद से प्रोग्राम को आगे प्रारंभ करते हैं। जब हम नवयुग की बात करते हैं तो एक की याद जरूर आती है, वो कौन है? नवयुग निर्माता, परम शक्ति, वो परमात्मा। उसे सुप्रीम साइंटिस्ट कहा जाता है, सुप्रीम अभियंता कहा जाता है और इस सारी दुनिया की इतनी सुंदर रचना करने वाला दुनिया का बेहतरीन आर्किटेक्ट है वो। तो जब नए युग की बात करने जा रहे हो तो उसे कैसे भूल सकते हैं। तो इस सभा में सर्वप्रथम अधिकार तो उन्हीं का है कि सबसे पहले तो वो इस सभा में अवतरित हो, पर हम सभी को दिल से उनका आह्वान करना होगा, क्योंकि कहते हैं ना, बिन भाव के मोल नहीं मिलता, तो बिन भाव के हरि कैसे मिलेंगे। तो हम सभी दिल से, विजन की भी बात हो रही है यहाँ पे, तो एक सुंदर विजन के साथ उस परम सत्ता का हम आह्वान करेंगे कि वो परम शक्ति परमात्मा पिता, मैंने दिल से उनका आह्वान किया कि हे परम पिता परमात्मा, इस नवयुग के निर्माण में आकर मेरे साथी बन जाइए और आप विजन क्रिएट कीजिए कि एक बहुत सुंदर आभा के साथ, चमकती हुई दिव्य आभा के साथ वो आसमान से उतरकर आपके पास आए हैं और आपके पास बिल्कुल आपके राइट साइड चेयर पर आपके साथी बनकर इस पूरे सेशन में आपके साथ बैठेंगे। क्रिएट कर सकते इस विजन को, क्योंकि हम सब विजन की बात कर रहे हैं। तो आंखें बंद कीजिए और उनका आह्वान कीजिए और उन्हें महसूस कीजिए, उन्हें स्थान दीजिए अपने बाजू में।
अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा।
और विज्ञान का सुंदर समन्वय हमारा आज का ये मंच शोभायमान है। जैसा कि कहा है, विज्ञान बिना आध्यात्म कुछ नहीं कर सकता और आध्यात्म बिना विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं, और इसीलिए शायद आज इस परमात्म घर में विज्ञान की शक्ति और आध्यात्म की शक्ति एक साथ एकजुट होकर इस मंच को सुशोभित कर रही है। हम सभी की ओर से मैं वडोदरा की हमारी प्यारी बहनों को अनुरोध करती हूँ कि हमारे इस सम्माननीय मंच का, इस शक्ति स्वरूप मंच का पुष्प गुच्छ एवं बैच से स्वागत और सम्मान करें। दिल तो हम सभी की होती है कि हम मंच पर आए और ऐसे मंच का सम्मान हम करें, पर सबका मंच पर आना संभव नहीं है, पर हाँ, आपकी तालियां जरूर मंच तक पहुंच सकती है। आपकी तालियों की आवाज बता रही है कि आप भी खुश हैं हमारे मंच को देखकर। हमारे अतिथियों को जो पुष्प गुच्छ दिए जा रहे हैं, इस पुष्प गुच्छ में बहुत से फूल हैं और ये सब आप सभी का प्रतीक है जो मंच पर पहुंच गए हैं, तो आप सब अपने लिए तालियां बजाइए। पुष्प गुच्छ एवं बैचेस से स्वागत के पश्चात हमारे बीच बहुत ही मधुर शब्द किंतु शक्तिशाली शब्द के साथ मधुरवाणी ग्रुप हमारे बीच आ रहा है। कल भी आप सभी ने उनका बहुत सुंदर भावपूर्ण गीत सुना। हमारे आदरणीय सतीश भाई जो इस गीत के निर्माता हैं, इन्होंने ऐसे हजारों गीत लिखे हैं और गाए हैं। साथ में हमारे नितिन भाई जो बहुत ही प्यारी आवाज, हमें ये मौका नहीं मिलेगा शायद, जो दो आवाज में ये गाते हैं, मेल फीमेल वॉइस में। साथ ही हमारे बिथिंद्र भाई, अर्चना बहन और धर्मिष्ठा बहन, ये हमारा मधुरवाणी ग्रुप हमारे बीच है। तो हम सभी मधुर तालियों से आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये गीत सभी के स्वागत में है।
ओम शांति। आपका यहाँ हुआ है शुभागमन। खिल उठे चमन चमन, विहस पड़े सुमन, और आपका इन वादियों में, ज्ञान सरोवर की इन लहरों में बहुत बहुत ही अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां बजा के आप सब स्वागत स्वीकार करें।
Thank you. जोड़ दे हम भी ज्ञान का संबंध आत्म ज्ञान से,
जोड़ दे हम भी ज्ञान का संबंध आत्म ज्ञान से,
सृष्टि का कल्याण करे सबको प्रभु पहचान दे, आबू अरावली भी देखो बाबा,
आबू अरावली भी देखो, आप खुशी से है नवा रहा, न्यू विजन फॉर न्यू एरा, न्यू विजन फॉर न्यू एरा, न्यू विजन फॉर न्यू एरा, न्यू विजन फॉर न्यू एरा,
न्यू विजन फॉर न्यू एरा, न्यू विजन फॉर न्यू एरा,
न्यू विजन फॉर न्यू एरा, न्यू विजन फॉर न्यू एरा,
न्यू विजन फॉर न्यू एरा, न्यू विजन फॉर न्यू एरा, न्यू विजन फॉर न्यू एरा, न्यू विजन फॉर न्यू एरा।
सुंदर शब्दों के साथ आपने समा बांध दिया, न्यू विजन फॉर न्यू एरा। स्वयं परमात्मा पिता भी दुआएं दे रहा है और शक्तियां दे रहा है। मधुरवाणी ग्रुप का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जितनी सुंदर प्रस्तुति, हमारी तालियां भी उतनी जोरदार हो तो अच्छा है। हम सभी जानते हैं कि सभी पौधों में पानी तो एक जैसा डाला जाता है, फिर भी गन्ना मीठा, अंगूर खट्टे, करेला कड़वा और मिर्ची तीखी होती है। वजह पानी नहीं है, परंतु उसका बीज है। ठीक इसी तरह हमारे मन के संकल्प, हम अपने मन में जैसे विचार बोएंगे वैसे ही फल हमें मिलेंगे। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जब इंसान की सोच तंग हो जाती है तो खूबसूरत जिंदगी भी उसकी जंग हो जाती है। तो विचारों को तंग न करें, बल्कि खूबसूरत बनाएं, विचारों को वृहद बनाएं, और इसी खूबसूरत विचारों के साथ, खूबसूरत सोच के साथ संबलपुर से जागृति विद्या मंदिर से छोटी छोटी कुमारियां एक बहुत सुंदर स्वागत नृत्य लेकर हमारे बीच में आ रही हैं। उसी खूबसूरत सोच के साथ तालियों से हम सभी आपका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं।
स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम
शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम।
अपने हर्ष का मिलता कहीं अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं अंत है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, शुभ स्वागतम
स्वागतम।
मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से।
मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से।
स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है।
आगमन से आपके आनंद ही आनंद है।
शुभ स्वागतम,
शुभ स्वागतम,
शुभ स्वागतम,
शुभ स्वागतम,
शुभ स्वागतम। आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले, सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना, नया नहीं ये बहुत पुराना, अपनों का संबंध है।
आगमन से
आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं अंत है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम,
शुभ स्वागतम,
स्वागतम। बहुत ही सुंदर मनभावन प्रस्तुति इन बच्चों ने हमारे बीच रखी। मुझे और जोरदार तालियों की उम्मीद है। जितनी सुंदर प्रस्तुति उतनी सुंदर आपकी तालियां। कहते हैं ना कि पछतावा जो है वो अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। इसलिए आप इस हॉल में बैठे हैं, हर क्षण का आनंद लीजिए, जो भी चल रहा है मंच पर उसका सुख लीजिए, उसे अपने अंतर जगत में उतारिए, क्योंकि आप आए ही हैं यहाँ के हर क्षण का आनंद और सुख उठाने के लिए। जहां तक हम विजन की बात कर रहे हैं, यहां पर विजन यानी जो हम आंखों से देखते हैं उसे तो हम सभी जानते हैं, पर बेसिकली यहां जिस विजन की बात की जा रही है वो विजन है थर्ड आई, तृतीय नेत्र जिसको हम कहते हैं, दिव्य बुद्धि जिसको कहते हैं। शंकर जी को दिखाया जाता है कि उनका तीसरा नेत्र है और उस तीसरे नेत्र के खुलने से ही समस्त संसार में एक बृहद एक विशाल परिवर्तन आ जाता है, बहुत बड़ा एक चेंज आ जाता है। ऐसे ये थर्ड आई अर्थात दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र, इस नेत्र द्वारा हम जो देखेंगे उसका बेसिस है स्पिरिचुअल विजडम। आध्यात्मिकता को बेसिस करके हमारा तृतीय नेत्र एक्टिवेट होता है और उससे जो विजन क्रिएट होता है उससे हम अपने मिशन को फुलफिल कर सकते हैं और एक न्यू एरा, एक न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू वर्ल्ड को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। यहां जो नॉलेज आप अगले तीन दिनों में सुनेंगे उसका एक ही उद्देश्य है, विजन यानी तृतीय नेत्र को, इस थर्ड आई को एक्टिवेट करना। इस कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं ना कहीं आप महसूस जरूर करेंगे कि हमारा तृतीय नेत्र जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट जरूर हुआ है। अगर आप इसी तरह बिल्कुल अच्छी तरह से हर बातों को समझेंगे, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट बस करना चाहूंगी कि आज तक जहां भी आप बहुत से कॉन्फ्रेंसेस में गए होंगे और जो आपने देखा उसी तरह से आपने सोचा होगा, वैसा ही एक नजरिया बनाया होगा, पर यहां पर आप जो भी सेशन अटेंड करेंगे तो एक फिजिकल एस्पेक्ट से नहीं, भौतिक रूप से नहीं, परंतु आप थोड़ा सा भौतिक जगत से ऊपर जाकर, जिसको हम मेटाफिजिकल कहते हैं, यानी यहाँ के स्पिरिचुअलिटी के जो अर्थ हैं, रहस्य हैं, गहराई हैं, उनको समझने की कोशिश करें, तब वो हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होगा। तो इस पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे इस कॉन्फ्रेंस के इंसाइट्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका आउटपुट क्या होगा, इसे हम सभी जरूर जानना चाहेंगे। और इसे स्पष्ट करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं हमारे विंग के चेयरपर्सन परम आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी। वो कहते हैं ना कि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए अपने सपने किसी को बताओ नहीं परंतु पूरे करके दिखाओ। कुछ ऐसा ही जज्बा हमारे आदरणीय भाई साहब रखते हैं, जो कहते बहुत नहीं है परंतु करके दिखाते हैं। हमारे बीच ऐसे उमंग और उत्साह लिए आज इस उम्र के पड़ाव पर भी हम निरंतर आपको गतिशील, कार्यशील देखते हैं और उत्साह में देखते हैं। हम सभी तालियों के साथ आपको डायस पर बुलाते हैं। आपके विचार और इस विषय की स्पष्टता कॉन्फ्रेंस के हम सभी सुनना चाहेंगे।
ओम शांति। मंच पर विराजित इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल परम आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भ्राता संजीव कुमार जी, जो CMD TCIL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से पधारे हैं, आज के कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर भ्राता राहुल प्रशांत जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड रिफाइनरी हेड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बड़ौदा, हमारे इस विंग की वाइस चेयरपर्सन आदरणीय बहन आशा देवी जी, जो विशेष भिलाई से पधारी हैं, साथ ही जैसा कल भी बताया गया था, हमारा यह कार्यक्रम नेशनल ना होके इंटरनेशनल जैसा हो गया है, तो आज तो विशेष रूप से ये इंटरनेशनल जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हमारे बीच में ब्रदर नेविल हॉडगिंसन, जो ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया से संपर्क रखते हैं, उसके हेड जो UK से पधारे हैं, भ्राता नेविल जी यहाँ पर हैं। विंग के हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर भ्राता भारत भूषण जी, जोनल कोऑर्डिनेटर भ्राता पीयूष जी, हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर भ्राता नरेंद्र पटेल जी, तथा मंच पर विराजित हमारे अन्य विद्वान वक्तागण, तथा सभा में उपस्थित आप सभी बहनों और भाइयों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, आप इस कॉन्फ्रेंस में न्यू विजन फॉर न्यू एरा, इसमें भाग लेने के लिए भारत के विभिन्न स्थानों से पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आज कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रेशन के साथ साथ एक विशेष दिन भी है। वो विशेष दिन है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, जो यूनाइटेड नेशन है अलग अलग डेज मनाती है, और आज का दिन 17 मई का दिन उन्होंने डेजिनेट किया हुआ है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के रूप में। तो मुझे ख्याल आ रहा था पहला विजन तो हमारा टेलीकम्युनिकेशन से ही संबंध रखता है, विज्ञान ने बहुत प्रगति की है बहुत समय से, लेकिन उसकी जो अल्टीमेट प्रगति है, जैसा मुझे याद आता है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में एक बार भाषण कर रहे थे, वहाँ उन्होंने कहा था अल्टीमेट साइंस का है माइंड टू मैटर इंटरफेस। अभी तक जितने इंटरफेस हैं मैटर टू मैटर हैं, हम दूर बैठे टीवी ऑन कर लेते हैं, जमीन की बात तो अलग है, यहाँ बैठे ही चंद्रयान को इतने हजारों किलोमीटर दूर उसका डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं, उसमें को ओपन करते हैं क्लोज करते हैं, सो मेनी एस्पेक्ट्स। तो मैटर टू मैटर इंटरफेस तक तो विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है, लेकिन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय खास कहता है कि अल्टीमेट प्रगति है माइंड टू मैटर इंटरफेस। माइंड में हमारे संकल्प उठे और वो संकल्प की फ्रीक्वेंसी ऐसी हो कि मैटर को ट्रिगर कर दे। मान फॉर एग्जांपल, हम पुष्पक विमान का नाम तो आप सबने सुना ही है, पुराने जमाने में सतयुग त्रेता आदि में पुष्पक विमान में ही यात्रा करते थे। तो ऐसा हो कि पुष्पक विमान में बैठे मन में संकल्प उठा कि हाँ उड़ो, बस वो फ्रीक्वेंसी उसे ट्रिगर कर दे, उड़ना शुरू कर दे, वो फ्रीक्वेंसी ट्रिगर कर दे जिस डेस्टिनेशन पर ले जाना चाहते हैं, यहाँ से लंदन चलो, यूएसए चलो। ये आपको कल्पना लग रही होगी, लेकिन ये वास्तव में एक बहुत बड़ी वास्तविकता है और इस पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो आध्यात्मिक रूप से इस पर कार्य कर रहा है, लेकिन विज्ञान भी इस क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने उस समय कहा था कि साइंस का ये अल्टीमेट एम होना चाहिए कि हाउ माय थॉट माय माइंड ट्रिगर्स द इंस्ट्रूमेंट। तो विज्ञान की भी उन्नति उतनी चाहिए, आध्यात्मिकता की भी उन्नति चाहिए, जिससे फ्रीक्वेंसी मैच की जा सके और पर्पस को प्राप्त किया जा सके। तो आज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे पर मैं समझता हूँ ये बहुत उपयुक्त होगा कि हम इस बात की ओर कार्य करें। आप कहेंगे भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, विज्ञान कार्य कर रहा है, लेकिन आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जब आप यहाँ पर हमारे राजयोग शिविर करेंगे, उसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से मन की पवित्रता से ये मुकाम को हासिल किया जा सकता है। पवित्रता की इतनी हाई डिग्री हो, हमारी थिंकिंग की ऐसी हाई डिग्री हो, और आज टेलीकम्युनिकेशन डे पर ये यथार्थ होगा, हम सब ये संकल्प लें कि हम अपने विचारों को सदा पॉजिटिव रखेंगे और पॉजिटिव के साथ साथ इस लेवल तक पहुंचाएंगे कि हम उससे महान से महान कार्य कर सकें। दूसरा मुझे याद आता है कि अभी पिछले वर्ष ही G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और उन्होंने तो रखा ही था विषय वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो वास्तव में ये न्यू एरा का प्रतीक है, नए समाज का प्रतीक है, जहाँ एक समाज होगा, एक भविष्य सबका, एक विश्व होगा। आज अनेकता बहुत हो गई है और उस अनेकता के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत होते हैं। आप आज का जानते ही हैं कि कैसे विश्व युद्ध की तैयारी जैसी हो रही, दो बड़े युद्ध भी चल रहे हैं, अनेक प्रकार की क्लाइमेट चेंजेस, नेचुरल प्रॉब्लम्स, फ्लड्स, तो आदि आदि, ये सब जो हो रहे हैं, प्रकृति के पांच तत्व ये अपना भयंकर रूप दिखा रहे हैं। तो इसलिए आवश्यकता ये है, अगर हम चाहते हैं कि ऐसा वन फ्यूचर हो सबका, तो हमें दो क्षेत्रों में कार्य करना पड़ेगा। एक क्षेत्र में तो विज्ञान के क्षेत्र में तो कार्य हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, क्योंकि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के पूरक है। जहाँ तक विज्ञान सोचता है बहुत अच्छा है, कर भी रहा है, लेकिन कई जगह जहां विज्ञान हाथ खड़े कर देता है वहां ऐसा देखा गया है कि आध्यात्मिकता बहुत तेजी से और सफलतापूर्वक कार्य करती है मन के संकल्पों के ऊपर, विचारों के ऊपर, किस प्रकार से हम अपने जीवन को गतिशील, स्पिरिचुअली एलिवेटेड बना सकें, वो कार्य आध्यात्मिकता का है। तो दोनों को एक दूसरे से मिलकर करना होगा और ये वसुधैव कुटुंबकम के अंदर निहित है। हम समझते हैं वसुधैव कुटुंबकम ये भारतीय संस्कृति का पुराना नारा है ही है, बहुत अच्छा नारा है, लेकिन इसके अर्थ को, यथार्थ अर्थ को समझने में कहीं हमसे थोड़ी बहुत चूक हो गई है। अब परमपिता परमात्मा बताते हैं वसुधैव कुटुंबकम का एक वास्तविक रूप है वसुधा, पृथ्वी, ये कुटुंब की तरह। तो वसुधा में सिर्फ मनुष्य ही नहीं है जो हम समझते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम आदि आदि कह देते हैं। वसुधा में तो सब पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, प्रकृति के पांच तत्व, सब ये वसुधा के अंदर आ जाते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए किसी विचारक ने बड़ा अच्छा कहा है वसुधैव कुटुंबकम। कुटुंब में क्या होता है, छोटे से छोटा बच्चा भी होता है, बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी है। तो जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, बस माँ की छाती से ही लगा रहता है, वहीं से ही उसे भोजन प्राप्त होता है, और छोटा बच्चा। ऐसे ही हमारी वसुधैव कुटुंबकम के सबसे छोटे सदस्य हैं ये पेड़ पौधे। जीवन पर्यंत ये धरती माता के साथ लगे रहते हैं, जीवन पर्यंत, और वहीं से उन्हें भोजन मिलता है, वहीं से ग्रोथ होती है उनकी, और वहीं उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। तो दे आर जो नेचर प्रकृति है, पेड़ पौधे, ये हमारे यंगेस्ट मेंबर है हमारे वसुधैव कुटुंबकम की फैमिली के। बच्चा जब बड़ा होता है तो क्या होता है, थोड़ा पेट के बल सरकना शुरू करता है। तो ऐसे जो शरीर के बल सरकते हैं, सांप, केंचुए आदि आदि, वो हमारे जस्ट थोड़ा उनकी तुलना में सेकंड यंगेस्ट मेंबर है। फिर और बच्चा बड़ा होता है तो दो हाथ, दो घुटने के सहारे चलता है, चौपा। तो ऐसे हमारे चौपाए जानवर हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जितने भी चौपाए चार पैर वाले हैं, वो हमारे थर्ड यंगेस्ट मेंबर है। एंड वी ह्यूमन बींग्स, हम लोग एल्डेस्ट मेंबर हैं इस वसुधैव कुटुंबकम फैमिली के, क्योंकि हमारे नीचे ही ये चारों पलते हैं। तो इसीलिए एल्डेस्ट मेंबर का ये कर्तव्य होता है परिवार में कि अपने सब यंगेस्ट मेंबर की पूरी अच्छी तरह संभाल करे। लेकिन विडंबना ये हो गई है कि एल्डेस्ट होते हुए भी हम लोगों ने जो हमारा यंगेस्ट मेंबर है, पेड़ पौधे, जिसके प्रति सबसे ज्यादा प्यार होना चाहिए, उसको जैसे कि समाप्ति की कोशिश की है। हम सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जो विश्व की सबसे बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं, वो इस कारण ही विशेष हुई हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा यदि हम चरितार्थ करना चाहते हैं तो हमें ये विजन रखना पड़ेगा कि जो भी चीज को हम देखें उसको हम इस दृष्टिकोण से देखें कि मैं एल्डेस्ट मेंबर, मैं पूर्वज हूं। जो पूर्वज और पूज्य इस संस्था का एक नाता, ये शब्द है, अपने को ये समझेंगे तो हम संसार के सर्व प्राणी, जीव जंतु, व्यक्तियों, पौधे, प्रकृति, हर एक को हम इस निगाह से देखेंगे, उनकी पालना करेंगे, उनको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये हमारा विजन होना चाहिए। और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनका चित्र पीछे दिखाया गया है, इनके जीवन के अंदर मुझे उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला है 6-7 वर्ष तक। तो मैंने देखा है उनके जीवन में, उनके कर्तव्य में, बोल में, सब जगह ऐसी वसुधैव कुटुंबकम की भासना भलकती थी हर एक को। और ऐसा होता था, बस जिसको भी वो संकल्प करते थे प्रकृति के, वो एक चरितार्थ हो जाता था। मुझे याद आता है हमारे संस्था में गुरुवार को भोग लगता है, तो भोग लगने के लिए संदेशी बहन ध्यान में जाती है और वहां से ध्यान में जाकर संदेश लाती है, तो बड़ा विषय है, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। और संदेश लाने के बाद बाबा वो भोग की डिब्बी खोल के हाथ में रखते थे, थोड़ा भोग और बस बाबा कहते आओ बच्ची आओ बच्ची। हम सब देखते थे किस बच्ची को बुला रहे हैं बाबा, आओ बच्चे। बस पीछे के दरवाजे से हॉल से एक बड़ी छोटी बुलबुल सी वो कभी और दृष्टिगोचर नहीं होती थी, गुरुवार के दिन उसी वक्त सुबह के वक्त फुदकती हुई आती थी, धीरे 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 आके पहले आई मेज पर बैठी, फिर और टेबल भोग की थाली तक आई, उसके बाद बाबा के हाथ पर बैठ करके वो भोग स्वीकार करती थी और बस भोग को ले करके थोड़ा चू चू करते थे, अपनी भाषा में शायद थैंक्स बोलती होगी, और उसके बाद वो धीरे धीरे चल के उड़ जाती थी। खैर ये तो चिड़िया की बात रही, हमने देखा ऐसा कि एक बार सांप निकला, बहुत भयंकर सांप, बड़ा, और सब कुछ भाई लोग उसके फन पर बांस पकड़ के खड़े हो गए कि ये नुकसान ना पहुंचाए। दूर से बाबा आ रहे थे, बाबा ने कहा बच्चे क्यों भीड़ लगा रखी है, कि बाबा दूर रहो आप, ये बहुत सांप है, बहुत फुफकार रहा है, बहुत बड़ा सांप है। तो बाबा ने कहा रे बच्चे को, बाबा के मुंह से हरेक के लिए ये विश्व पिता बच्चे और बच्चियां निकलते थे और वही वाइब्रेशन और वही भाषना, आओ बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना, बस आओ। बाबा आए पास में और जो बहुत फुफकार रहा था बाबा उसके सामने जस्ट खड़े हुए, थोड़ा देखा उसे दृष्टि दी, वो भी बस खुला होके और फिर जरा सा कुछ सेकंड के अंदर एकदम शांत हो गया। बाबा ने एक बच्चे को बोला इसको पूंछ से पकड़ो, मटका लाओ, मटके में डालो, कपड़े से बांधो और जंगल में छोड़ आओ, देखो बच्चे को कोई नुकसान ना हो। तो ये है वसुधैव कुटुंबकम की भाषा और व्यवहार, हमारा भी व्यवहार, इसका मतलब ये नहीं हानिकारक उनको हम ये करें। बाबा के अंदर तो वो शक्ति थी, इतनी आध्यात्मिक शक्ति उनके जीवन की, तो ये वसुधैव कुटुंबकम में ये महसूस होना चाहिए कि वास्तव में जो नरेंद्र वन अर्थ वन फैमिली, हमारा एक परिवार है एंड वन फ्यूचर, और वो वन फ्यूचर है न्यू एरा जो आने वाला है। एक और बात मुझे विचार में आती है कि गवर्नमेंट भी, विश्व की सभी गवर्नमेंट इस पर कार्य कर रही हैं जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम है। वास्तव में इस पर एक बड़ा अटेम्प्ट 1992 में फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में, और वहां पर अल्टीमेटली वहां विश्व के 100 से अधिक देशों के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट वो इकट्ठे हुए थे और तब उन्होंने इसकी विभीषिका को पहचाना था कितना खतरनाक है। वहां पर उन्होंने एक नारा दिया था इसका कि ये प्रॉब्लम एक चीज से ठीक हो सकती है, हमारा लाइफ स्टाइल से। हमारा लाइफ स्टाइल बहुत लग्जूरियस लाइफ स्टाइल हो गया है और वो एक सिंपल लाइफ स्टाइल जितना साधारण होगा। महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे मदर अर्थ इज हैविंग सफिशिएंट फॉर मैन्स नीड बट नॉट फॉर हिज ग्रीड। तो इस ऐसा ही हमारा लाइफ स्टाइल सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का होगा। तो ये हमारा विजन ही नहीं होना चाहिए, विजन के साथ साथ एक्शन भी होना चाहिए, तब हम एक न्यू एरा को अपने सम्मुख ला सकेंगे। एक और बात कि ये सब तो मैन ओरिएंटेड है, लेकिन प्रकृति का क्या करेंगे, नेचर, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, ये इनका ऐसा भयानक रूप हो गया है। अमेरिका वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिफिक फाइनेंशियल एंड ऑल पावर्स जो है वो भी बिल्कुल नतमस्तक होके खड़ा होके देखता रहता है जब प्रकृति की विभीषिका होती है, साइक्लोन आते हैं, फ्लड आते हैं, सुनामी आती हैं, अर्थक्वेक आते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम। कई चीजों को तो फोरकास्ट भी नहीं कर सकते, अर्थक्वेक होता है एक सेकंड पहले तक फोरकास्ट नहीं कर सकते, चाहे जितनी भी साइंटिफिक एडवांसमेंट हो। फिर उसके बाद हाँ उसके होने वाले नुकसान को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन उसको आने से नहीं रोक सकते। तो इसलिए अभी ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, एक अटेम्प्ट हमें और करना पड़ेगा, जो नेचर है ना, उस नेचर के अर्थ को सही समझना होगा। उसके दो अर्थ हैं नेचर के, नेचर माने प्रकृति, दिस वन इज एक्सटर्नल नेचर, फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर, और दूसरा आंतरिक प्रकृति, इंटरनल नेचर, हमारा जो स्वभाव है, संस्कार है, उसको हमें उस नेचर के साथ मैच करना पड़ेगा। और जितना एक्सटर्नल नेचर एंड इंटरनल नेचर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में ना होकर, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी के रूप में होकर कार्य कर सकेंगे, तो उतना हम बाहरी नेचर को भी कंट्रोल कर सकेंगे। बाहरी नेचर के लिए तो वैसे तो साइंस ने बहुत एडवांसमेंट किया है, कंट्रोल की है, जल है, नल की टोटी खोली, जल कंट्रोल में आने लगा, जल वायु है, पंखा खोला, एसी खोला, वायु ठंडी, लाइक दैट। लेकिन जब ये अपनी विभीषिका पर उतर आते हैं, भयंकर इनका रूप हो जाता है, तो हम सब जानते हैं कि क्या होता है। क्षणों के अंदर, मिनट भी नहीं लगता, सेकंडों के अंदर हजारों लाखों की पॉपुलेशन वो मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। और अभी वह समय आने वाला है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये, कोई हम निराशावादी लोग नहीं है, लेकिन परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को 1936 में जब इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी, तो मुख्य तीन साक्षात्कार कराए थे। एक साक्षात्कार में ये था, इस नेचर एटॉमिक वीपन्स के द्वारा दुनिया का निशान, तब तक एटम बम का नाम ही किसी ने नहीं सुना था। 1945 में पहला एटम बम बना था, जब हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा था, तब उससे कुछ वर्ष पहले एटम का नाम सुना था। लेकिन 36-37 में जब बाबा ने साक्षात्कार किए थे ध्यान में, उसमें देखा था ऊपर से ऐसे बम गिर रहे हैं कि हजारों क्या लाखों की संख्या तक में और हजारों मील तक पूरा भयंकर विनाश, एटम बम्स, एटम नाम नहीं था तब, तो एक बाबा ने ये देखा था। दूसरा देखा था प्राकृतिक आपदाओं का, कि ये प्रकृति के पांच तत्व अपनी भयंकर लीला दिखा रहे हैं, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है धरती का, कहीं वाटर सुनामी है, फ्लड है, कहीं सूखा पड़ा हुआ है, कहीं अति गर्मी है, सूर्य की गर्मी जो भारतवर्ष में भी इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है, बहुत गर्मी पड़ने वाली है और बहुत जगह 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होने की संभावना है। इसी तरीके से वायु के द्वारा साइक्लोन एटसेट्रा, ये सब विनाश के प्रतीक, ये उस समय बाबा ने दृष्टि में ध्यान में देखे थे, और बस बाबा का एकदम वो होने लगा, और बस आंखों से जैसे आंसू निकलने लगे, और बाबा ने कहा बस प्रभु अब, जैसे अर्जुन प्रसिद्ध है ना, अर्जुन ने भी कहा था हे प्रभु बस अब अपना मोहनी रूप दिखाइए भगवान। और तब भगवान ने एक असली साक्षात्कार कराया नई दुनिया का। आकाश से सितारे उतरते थे और सितारे आ करके दुनिया में कोई राजकुमार कोई राजकुमारी बन रहे हैं, बहुत स्वर्णिम दुनिया है, सब नाच गा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। बाबा भी देख के बहुत बहुत प्रसन्न हो गए, और तभी बाबा को कानों में आवाज सुनाई पड़ी, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। न्यू एरा का बाबा ने हिंट दिया, साक्षात्कार कराया, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। बाबा ध्यान से उतरे, मैं कैसे ये दुनिया बनाऊंगा, मुझे तो मालूम नहीं ये कौन था, किसने मुझे ये ध्यान में ये साक्षात्कार कराया, कुछ नहीं मालूम बाबा। तो ये तो यज्ञ की हिस्ट्री एक दिन आप सुनेंगे, उस दिन आपको सारा इसका डिटेल पता चलेगा, किस प्रकार से परमात्मा ऐसी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, और उसी को आधार लेके, उसी विजन के आधार पर जो बाबा ने विजन देखा था, उस विजन के आधार पर ही उस न्यू एरा को बनाने के लिए, ये केवल हमारी विंग ही नहीं बल्कि ऐसी ऐसी हमारी 20 विंग्स हैं, 20 विंग हैं, जैसा आपको कल भी थोड़ा बताया गया था, वो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। और इसके लिए ही ये हमारे अंदर ये दोनों प्रकृति जो हैं इनके अंदर हार्मनी होनी चाहिए। वास्तव में एक्सटर्नल जो नेचर है इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अवर इनर नेचर एंड वाइस वर्सा। तो बाहर की प्रकृति और आंतरिक प्रकृति एक दूसरे के प्रतिबिंब है। जैसी हमारी आंतरिक प्रवृत्ति होती है, नेचर होती है, जब सतो प्रधान होती है, सुखदायी होती है, तो बाहर की दुनिया भी सतो प्रधान होती है, आदि आदि। तो ये डिटेल में बातें आपको बताई जाएंगी। और वास्तव में ये कोई नई चीज नहीं है, हमारी भारत की प्राचीन संस्कृति में हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण है। तानसेन का उदाहरण भी है, वो म्यूजिक राग निकालते थे, जब दीपक राग निकालते थे दीपक जल जाया करते थे, जब मेघ राग निकाला करते थे वर्षा होने लगती थी। इट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी मैचिंग ऑफ अवर इंस्ट्रूमेंट्स विद द नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ प्रकृति, नेचर से। बस उस क्षेत्र तक अब विज्ञान को पहुंचना है, और विज्ञान उस क्षेत्र तक पहुंच रही है, किस प्रकार से अवर इनर नेचर कैन कंट्रीब्यूट towards the external nature so that the both frequencies match and immediately our requirement is fulfilled. And that is why Satyug mein jo prakriti hogi bahut sato pradhan hogi, na ati varsha na ati garmi na ati barsat. Kyon? Kyunki hamari nature aur bahar ki nature ek dusre se extreme harmony mein hongi, koi bhi unme vishesh wo nahi hogi. Aur jo bhartiya sanskriti ka ek siddhant hai, जियो और जीने दो, ये वास्तव में बहुत बड़ा सिद्धांत है। लेकिन आज विश्व में जो सिद्धांत ज्यादातर चल रहा है वेस्टर्न फिलॉसफी का, वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट का कोई ही जीने का अधिकार है, जो कमजोर है उसको जीने का उतना। लेकिन भारतीय संस्कृति की बातें हम पुनः लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप यहां आए हैं। तो अभी आगे आने वाले 3 दिनों में, जिसमें हमने ये कॉन्फ्रेंस को पूरा होलिस्टिक बनाया है, इसमें इसके चारों पांचों एस्पेक्ट, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट, ये सारे एस्पेक्ट इसमें लिए गए हैं। ये टॉपिक भी आप देखेंगे, हर टॉपिक जो है अपने अपने एस्पेक्ट में कम्प्लीट है। तो उससे आप भी ये प्रेरणा लेके जाएंगे कि हम भी इस ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बने। इसके लिए आपको इन एडवांस बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।
आदरणीय भाई साहब ने बहुत ही सुंदर बात हम सभी के बीच रखी, वसुधैव कुटुंबकम। हम कई बार ये शब्द, ये वाक्य बोलते हैं, सुनते हैं, परंतु इतना गहरा भावपूर्ण अर्थ भाई साहब ने हमारे बीच रखा। और आपने कहा कि हम सिर्फ थॉट क्रिएट नहीं करें परंतु एक्शन में भी लाए उसको। चलिए, हम बहुत बड़े बड़े टास्क न करें पर कम से कम छोटे छोटे टास्क तो पूरे कर सकते हैं। तो क्या आप सभी यहाँ, जब अभी 2-3 दिन है, तो ऐसा प्रकृति के और हमारे बीच, आंतरिक और बाह्य प्रकृति के बीच, दोनों के बीच मित्रता और समन्वय बनाना चाहते हैं? कौन कौन चाहते हाथ उठाए? सभी चाहते, बहुत अच्छा। तो एक छोटा सा टास्क हम पूरा करेंगे। जैसा भाई साहब ने कहा, हम सबसे बड़े मेंबर है इस धरती के, तो इसलिए सभी के प्रति प्रेम, कृतज्ञता, जिसे ग्रैटिट्यूड कहते हैं हम, वो भाव होना चाहिए। तो एक छोटा सा टास्क, 5 तत्व हमारे आसपास हैं, उन 5 तत्वों का हम शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया कैसे करें? किसी वस्तु का जो हम उपयोग कर रहे हैं, आवश्यकता के अनुरूप उपयोग करना, उसको वेस्ट नहीं करना, उसे खराब नहीं करना, ये भी उसका शुक्रिया है, उसे थैंक्स कहना है। तो हम सभी की आपसे यही गुजारिश है कि हम सब मिलकर, आप नहीं, हम सब मिलकर एक टास्क करें कि जब भी हम भोजन करें, क्योंकि प्रकृति ने भोजन दिया है तो प्रकृति का ये रिस्पेक्ट है, भोजन जब करे तो जब हम भोजन थाली में ले तो 15 से 20 सेकेंड, मैं ज्यादा नहीं कह रही हूं, 15 से 20 सेकेंड हम उस प्रकृति का, उस भोजन देने वाले का, उसे उत्पन्न करने वाले का, हर एक का थैंक्स करें। उसके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड हम एक्सप्रेस करें। कर सकते हैं? बस 10 से 15 सेकेंड। जब भी आप चाय, कॉफी या पानी लें, वो भी एक एलिमेंट है, प्रकृति का तत्व है, तो जब भी आप पानी लें तो 5 से 10 सेकेंड हम उसे भी बहुत प्रेम से देखते, उसका शुक्रिया अदा करते हुए, उसे थैंक्स कहते हुए फिर उसे ग्रहण करें। बड़ा टास्क तो नहीं है, छोटा सा है, कर सकते हैं। जब भोजन पर हम सब एक साथ जाते हैं, अगर एक करेगा तो एक को देखकर दूसरे को याद आएगा, दूसरे को देखकर तीसरे को, और एक दो को हम याद भी दिला सकते हैं बड़े प्रेम से कि हम पहले इसके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड हम शेयर करें, व्यक्त करें और फिर इसे ग्रहण करें। तो ये हमारा प्रैक्टिकल इस प्रकृति के प्रति एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। वैसे भी कहते हैं कि आनंद का क्षण और अन्न का कण दोनों ही कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, जब मिले उसका आनंद लो। तो इसलिए आप भी ध्यान रखें कि समय का भी ध्यान रखें, समय आपका कहीं व्यर्थ न जाए। दूसरा, जो अन्न आप यहाँ से ले रहे, भगवान के घर का ब्रह्मा भोजन है, उसे भी पेट भर के खाइए आवश्यकता अनुसार, पर उसका शुक्रिया जरूर अदा कीजिए। जो भी आप साधन यूज कर रहे उनका भी शुक्रिया अदा कीजिए। जब आपको थोड़ा सा समय मिले, जब आप बगीचे में कहीं पर लॉन में पेड़ पौधों के बीच में है, तो उन्हें भी प्यार से स्पर्श कर दे। हालांकि लिखा है किसी को भी टच नहीं करना है, पर आपके कभी दिल करे, तोड़ने के लिए नहीं, उसे प्रेम से टच करते हुए उसे भी अच्छे वाइब्रेशन दीजिए कि आप हमारे परिवार के छोटे सदस्य हैं, तो हमारा प्रेम और स्नेह सदैव आपके साथ है। तो ये टास्क मुझे उम्मीद है हम सब मिलकर 3 दिन में जरूर जरूर पूरा करेंगे। करेंगे सभी? हाँ, आपकी तालियों की आवाज से लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसी ही शुभ भावनाएं, अपना ग्रैटिट्यूड हम सभी के बीच व्यक्त करने के लिए। पानीपत से पधारे हमारे इंजीनियर साइंटिस्ट विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय भ्राता भारत भूषण भाई जी को हम तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं।
ओम शांति। परम आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई साहब, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, हमारे विंग के चेयरपर्सन भ्राता मोहन सिंगल जी, वाइस चेयरपर्सन आशा दीदी जी, और आज के मेहमान मिस्टर संजीव कुमार CMD TCIL और मिस्टर राहुल ED रिफाइनरी वडोदरा, और सम्मानित मंच और प्रिय भाइयों बहनों, बहुत ही सुंदर विषय न्यू विजन फॉर न्यू इरा। भ्राता मोहन सिंगल जी ने बहुत सुंदर उसे टच किया। एक्चुअली अपनी संस्था इसी थीम से शुरू हुई है, जो कि थोड़ा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारे पिता श्री ब्रह्मा को परम पिता शिव परमात्मा ने कैसे विजन दिखाए फॉर न्यू इरा, उस नवयुग के लिए बड़े सुंदर सुंदर विजन, और उसे जब बड़े सुंदर सुंदर वो विजन दिखाए, एक ऐसी नई दुनिया बनानी है, एक ऐसी ऊपर से शहजादे वो बनते सितारे, कोई शहजादा कोई शहजाद, ऐसी सुंदर दुनिया बनानी है, तो एक विजन मिल गया ना। विजन तो बहुत जरूरी है, किसी भी चीज में आप ग्रैंड सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, पहले आपका विजन क्या आपने देखा। श्री अब्दुल कलाम जी कहते थे ना, हैव द ड्रीम, हैव द ड्रीम, हैव विजन, विजन। अगर आप कुछ सपने ही नहीं ले रहे, कोई सुंदर सा विजन ही नहीं रख रहे, तो आप क्या करेंगे। और सचमुच वो विजन देखा, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन। मैं कभी कभी सोचता हूं कितना सुंदर उसका प्लानिंग किया गया, कितना सुंदर उस परमपिता परमात्मा के द्वारा। पहला स्टेप ये नहीं था कि पब्लिसिटी करो, प्रचार करो, नहीं, पहला स्टेप 14 ईयर तपस्या करो, बिल्कुल बन जाओ एक प्रैक्टिकल में देवी देवता उस नई दुनिया के सम, बिल्कुल वैसे ही शुद्ध और पवित्र। कैन यू बिलीव, हमारे 300 भाई बहने जो शुरू में ओम मंडली के नाम से, फिर बाद में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, इतनी तपस्या किया 14 साल, कोई पब्लिसिटी, कोई प्रोग्राम, कोई पब्लिक के बीच में नहीं, ओनली उन्होंने 14 वर्ष तप किया, कोई छोटी बात है, उनके लिए बजाइए तालियां जितनी बजा। आज सारा इंस्टीट्यूशन में जितनी सेवा हो रही है उस तप का फल है, उस तप का फल है। बाबा का विजन था, अगर तुम जितने भी हो अगर बिल्कुल ऐसे बन गए भगवान के समान, बाबा के समान, फिर सारी दुनिया का कल्याण मुश्किल नहीं, फिर तो बहुत इजी है। फिर माउंट आबू 50 में आए, फिर प्रचार शुरू हुआ। मनोहर दादी जी जो यहाँ डायरेक्टर थी पहले पहले ज्ञान मानसरोवर, वो मुझे सुना रही थी कि 7 सेंटर पहले पहले जो खुले, इतना अपोजिशन था, लोगों के लिए नई चीज थी, समथिंग न्यू करो ना, लोगों को कुछ समझ नहीं आता। और कहती मैं बाबा के पास आई, एक 8वां सेंटर जो खोला था बड़ी मेहनत से, वो बंद हो गया अपोजिशन कारण, लोगों ने बंद करा दिया। तो मैं ब्रह्मा बाबा उस वक्त थे उनके सामने आई, थोड़ा मायूस थी कि बाबा वो सेंटर खोला था ना बंद हो गया। बच्ची तुम चिंता नहीं करो, अरे ये 8वां तो क्या, एक दिन 108 सेंटर खुल जाएंगे, देखना तो सही, एक दिन 1008 सेंटर खुल जाएंगे। मनोहर दादी के शब्द थे कि मैं सोच रही थी कि बाबा ऐसे ही हमें पंप करके ऊपर नशा चढ़ा रहा है, अरे 8 खोलने में इतना दम लगा है और वो भी 8वां बंद करा दिया। लेकिन उनके टाइम पे 4000 सेंटर हो गए थे, अब तो बहुत 10000 हो गए हैं। कि अब मैं सोचती हूं कि सचमुच बाबा ने कितना सही कहा था, बाबा का विजन था, बच्चे एक दिन 108, एक दिन 1008, आज तो 10000 तक सेंटर्स, कितनी गीता पाठशालाएं, यूएनओ से भी अफिलेट हो गई है संस्था, 140 देशों में झंडा लहरा दिया। ये था विजन, बाबा का विजन। बाबा ने कभी भी थोड़ा सा भी डगमगाया, कैसी भी परिस्थिति आई, कैसा भी कुछ हुआ, न्यू विजन फॉर न्यू इरा। कितना अच्छा उसका हिंदी शब्दार्थ रखा है, न्यू युग के लिए नया दृष्टिकोण। किस कोण पे हमारी दृष्टि टिकी है, वो कोण जो है अगर हमारा पॉजिटिव हो जाए, दृष्टि को कभी ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, वो एक्सरसाइज के लिए। लेकिन हमारा अंदर मन का दृष्टिकोण, वो भी मन की भी तो दृष्टि है ना, वो सदा एक पॉजिटिव सकारात्मक की तरफ सदा लगी रहे। दृष्टिकोण अगर पॉजिटिव होगा तो सब कुछ ठीक होता रहेगा, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा का सदा पॉजिटिव रहा, चलता गया, आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। 2 ड्रंकर्ड पर्सन रोजाना शराब पी के लेट आना, 4-5 दिन के बाद कभी एक ने अपनी वाइफ की पिटाई कर देना, कभी दूसरे ने कर देना, चलता रहा। 3-4 साल के बाद एक की वाइफ को हार्ट अटैक हुआ, उसने हार्ट की हॉस्पिटल वार्ड ए में एडमिट कर दिया। दूसरा जब लेट आवर आया, उसे पता था, पड़ोस में ही थे, पता लगा जब ये इन्फॉर्मेशन, उसने अच्छी तरह जम के पिटाई की कि तेरा हार्ट अटैक क्यों नहीं हुआ। फिर किया 2-3 दिन बाद, फिर किया, उसका भी हार्ट अटैक हो गया 10 दिन बाद, उसने भी सेम हार्ट की हॉस्पिटल वार्ड बी में एडमिट कर दिया। दोनों उन फ्रेंड ने, ड्रंकर्ड फ्रेंड ने एक दिन रात को ड्रिंक करने के बाद सलाह बनाई, क्यों ना हम रीमैरिज कर लेते हैं। उन्होंने कर लिया, पहली को मैसेज भेजा गया, तेरे हस्बैंड ने रीमैरिज कर लिया। ओ शॉक, इतना शॉक लगा कि वहीं हार्ट फेल हो गया। दूसरी को वार्ड बी में मैसेज भेजा गया, तेरे हस्बैंड ने रीमैरिज कर लिया। कहती सच, वाह भगवान का शुक्रिया, मुझे उस जालिम के जेल से निकाला, अब तो मैं एक बहुत बड़ी समाज सेविका बनूंगी। उसे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, खुशी में अर्ली रिकवरी हो गई। यह है दृष्टिकोण। सेम सिचुएशन सेम वो, लेकिन एक का पॉजिटिव सोचने का नजरिया, एक का नेगेटिव सोचने का नजरिया, एक को कहां ले गया, एक को कहां ले गया, एक को मौत दे गया, एक सचमुच बहुत बड़ी समाज सेविका बनी। कितना सुंदर किसी शायर ने कहा है, खिड़कियों की सलाखों से देख रहा था नीचे कीचड़, ऊपर आसमां में चांद देखा, किसी ने कीचड़ में कमल तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। कोई कीचड़ में भी कमल, कितना सुंदर कमल खिला हुआ है। और चांद जिसकी कवियों ने किस किस चीज से तुलना की है, कोई कहते हैं दाग ही तो लगा है। ये डिपेंड करता है हमारे कैसा हमारा विजन है, कैसा हमारा दृष्टिकोण है। वी कांट चेंज द सिचुएशन बट वी कैन चेंज अवर एटीट्यूड टुवर्ड सिचुएशन। हम हालात को नहीं बदल सकते परंतु हम ख्यालात में तबादला तो ला सकते हैं ना। ख्यालातों में तबादला लाना है। यहां आते तबादला हो गया ना ख्यालातों में, एक दिन में ही सब कितने खुश हो गए क्योंकि चेंज हो गया, दृष्टिकोण चेंज हो गया। उसको चेंज करने के लिए क्या रखें, विशेष ध्यान। विशेष ध्यान मैं बताना चाहूंगा तीन शब्द केवल, 3S अगर ध्यान रखेंगे तो आपका विजन सदा बहुत ही सुंदर और पॉजिटिव रहेगा। वो क्या है, पहला है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल विजन होना चाहिए हम सबका, ये बेस है, सबसे पहला फाउंडेशन है हमारे मेडिटेशन का, ब्रह्म कुमारीज का, कि सबको हमें सोल कॉन्शियसनेस के रूप में, कि सब आत्माएं हैं, भाई भाई हैं। ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन एकमात्र संस्थान जिसमें सब धर्मों के लोग अच्छी संख्या में, वेस्टर्न कंट्री में जाओ कितने क्रिश्चियन है, मुस्लिम कंट्रीज में जाओ कितने मुस्लिम है, क्योंकि इट इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन। इसमें सब धर्मों के लोग हैं। पंजाब में जाओ कितने सिख भाई हैं जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं। तो ये सब धर्मों से, सब रंगों से ऊपर स्पिरिचुअलिटी का अगर हमारा विजन होगा कि हम सब आत्माएं हैं, हम भाई भाई हैं, ये अगर हमारा विजन होगा तो सचमुच एक बहुत सुंदर संसार की स्थापना हम कर पाएंगे। हम वंडरफुल ये है कि हम ओरिजिनलिटी को भूल गए, हम उस ओरिजिनलिटी को ना भूलें। वास्तव में हम कौन हैं, इस चीज को आज भी मॉर्निंग में आपको पाठ कराया होगा, उसको समझना बहुत जरूरी है। कौन मैं, जनरल मैनेजर, अरे भाई ये तो तेरा डेजिनेशन है। मैं तो कौन, मैं इंजीनियर, अबे ये तेरी क्वालिफिकेशन है। तुम कौन हो, मैं कौन हूं, मैं हिंदू, ये तो तेरा रिलीजन है। तुम कौन हो, मैं मिस्टर सो एंड सो, ये तेरे फिजिकल आइडेंटिटी है। लेकिन तुम कौन हो, मैं पुरुष हूं, ये तेरा जेंडर है। तुम कौन, अच्छा तुम ही बता दो मैं कौन हूं। ये प्रैक्टिकल एक जीएम ने आया आश्रम पे, ये बात हुई, फिर उसे बताया यू आर ए सोल, ए पॉइंट ऑफ लाइट, एस ओ यू एल, सब्जेक्ट ऑफ यूनिक लाइट। अपने आप को पहचान, वो चीज जरूरी है ना। उस ओरिजिनलिटी को कभी नहीं भूलना, वो अगर हम याद रखते हैं तो उससे जीवन बहुत श्रेष्ठ बन जाता है। रामलीला के दिन थे, रामलीला चल रही थी, 10,000 लोग रोज आते थे, तो बीच में हनुमान जी का जो पार्ट प्ले करता था ना, उसे बीमार हो गया। बीमार हो गया तो सोचा सोसाइटी वालों ने, ऐसे किसको लाएं, मार्केट में गए, एक गोल मटोल रामलाल साइकिल वाला था, कि ये बिल्कुल फिट रहेगा। उसे रिक्वेस्ट किया, कहता मैं कभी नहीं, अगर तू चिंता ना कर तेरे को रिहर्सल करा देंगे। ले आए, उसे सजा दिया जी, बिल्कुल फिट, जैसे सचमुच सच्चे हनुमान जी। छोटा सा रोल है, उसे बताया कि बस तुझे रावण आएगा ना, 5 चक्कर इधर काटने, जय श्री राम, 5 इधर काटने, जय श्री राम। फिर वो पूछेगा तू कौन, तुझे कहना पवन सुत हनुमान। तो ऐसा ही हुआ, बीच में आया, और जब वो रावण आया, पहले तो ऐसा से पूछा तू कौन, उसने वैसे ही 5 चक्कर उधर काटे, पवन सुत। फिर वो जोर से गुर्राया तू कौन, वो तो घबरा गया, कहता रामलाल साइकिल वाला, और भाग गया। मतलब देखो, ओरिजिनलिटी मनुष्य को नहीं भूलती है। आप कितना भी आर्टिफिशियल बन जाएं, परंतु हे इंसान, ये कितनी बड़ी बात है, हम अपनी ओरिजिनलिटी भूल गए कि वी आर सोल, ए पॉइंट ऑफ लाइट, सिचुएटिंग इन द सेंटर ऑफ हेड, ये मैं पार्ट प्ले कर रहा हूं इस चीज का पार्ट। ये अगर हमें पार्ट पक्का हो जाए, फिर मेडिटेशन भी बहुत अच्छा लगेगा और सारे वाइसेस खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके दूसरा एस है स्वीटनेस, मधुरता। ब्रह्मा कुमारीज का सारा कार्य, जितनी हमारी बहनें, विशेष बहनें भी, भाई भी, आप देखो, आप जब से आए कितना काम चल रहा है। नीचे तो 20,000 लोग आते हैं, पर हर चेहरे पे मुस्कुराहट, कितनी मधुरता से बात करते हैं, ये स्वीटनेस से सारा कार्य, बड़े बड़े हमारी संस्था के कार्य गवर्नमेंट से हों किसी से, केवल इस मधुरता से इतने बड़े कार्य हो जाते हैं, असंभव भी संभव, बिल्कुल झुक जाते हैं लोग। ये स्वीटनेस भी एक बहुत बड़ी चीज है, इसको भी अगर हम जीवन में धारण करें तो हम सचमुच एक न्यू एरा की ओर अग्रसित होंगे। मैं बॉम्बे में गया तो वहां एक सेंटर है, करोड़ों का सेंटर, वो इसी के कारण ही मिला, उसकी बहन की मधुरता के कारण, वैल्यूज के लिए वैल्यू बेस्ड एक सेंटर बनाना था, 15 संस्थाओं ने अप्लाई किया था और जो मेन था ना डायरेक्टर, उसने सोचा इनका एग्जाम लेते हैं कि वैल्यूज हैं या नहीं, हर एक जो भी आता था उसकी ऐसी इंसल्ट करता था, वो छोड़ गए, नहीं देना ना सही हम जाते हैं। पर जब ब्रह्मा कुमारी की बात आई, 10 बार इंसल्ट किया, फिर भी भाई जी ऐसी बात नहीं है, भाई जी ऐसी बात, उसने कहा इन्हीं को ही ये देना है और वो लैंड अलाट किया करोड़ों का ब्रह्मा कुमारी को। स्वीटनेस बहुत बड़ी चीज है ना, उसको हम सदा कभी ना छोड़ें, तो वो भी एक। और लास्ट है सेल्फलेस सर्विस, जितना हम सेल्फलेस सर्विस करते हैं उसको जो है वो चीज भी हमारे जीवन में बहुत ही बड़ी जीवन में धारणा लाती है, निस्वार्थ सेवा, उससे भी सचमुच नवयुग की ओर अग्रसर होते हैं। निस्वार्थ सेवा करना ये एक बहुत बड़ी बात है। यहां सभी भाई बहनों का जीवन पूर्णतया समर्पित, बिना पे के सब लगे हुए हैं सेक्रीफाइस, और उनमें एक निस्वार्थ सेवा की भावना है, जिससे कि सचमुच नवयुग आने की पूर्ण संभावना। थैंक यू वेरी मच, ओम शांति। धन्यवाद,
बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब का। जैसे कि हम जानते हैं कि दूध शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है, पर एक ही दिन टिकता है। दूध में अगर थोड़ा छाछ डाल दो दही बन जाता है तो 2 ही दिन चलता है। दही को मथ दो मक्खन निकलता है तो 3 दिन चलता है, पर मक्खन को तपा लो तो उसमें जो घी निकलता है वो कभी खराब नहीं होता। जैसे एक दिन में खराब होने वाले दूध में कभी न खराब होने वाला घी समाया है, ऐसे ही हमारे मन में भी असीम शक्तियां समाई हैं। बस आवश्यकता है उसमें अध्यात्म को भर के उसका मनन मंथन चिंतन करके उसे तपाने के, तो हम कभी न हारने वाले एक अद्भुत व्यक्तित्व बन सकते हैं। और हमारे आदरणीय भारत भूषण भाई जी हमेशा ऐसे मथ कर हमारे लिए घी निकाल कर लेकर आते जो उनका खत्म ही नहीं होता है। सुनते जाओ, फिर हमें सुनने के लिए और भी मौके मिलेंगे। जिस गोल्डन एरा की हम बात कर रहे हैं, मुझे याद आता है एक बार एक कॉन्फ्रेंस थी जुरिस्ट विंग की, और काफी सारे बुद्धिजीवी और जजेस आदि स्टेज पर थे। एक जज गेस्ट थे जिन्होंने मंच पर आकर एक बात कही, कहा कि मैं 3 दिन से यहां हूं और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है 3 दिन का, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर ब्रह्मा कुमारी जो बोलती वो झूठ बोलती है। सुनकर सभी स्तब्ध हो गए, सन्नाटा हो गया एकदम से एक मिनट के लिए। उन्होंने कहा ब्रह्मा कुमारी जो कहती हैं कि धरती पर स्वर्ग आने वाला है, सतयुगी दुनिया आएगी जहां प्यार होगा, शांति होगी, आपसी एकता होगी, वातावरण बहुत अच्छा होगा, तो वो जो कहती है कि ऐसी धरती पर ऐसा स्वर्ग आएगा ये गलत है, परंतु स्वर्ग आ चुका है जो मैं इस कैंपस में देख रहा हूं। प्रैक्टिकल में ऐसी दुनिया जिसकी हम कल्पना करते हैं, ये ज्ञान सरोवर एक ऐसा ही मॉडल है, ब्रह्मा कुमारी के कैंपस ये मॉडल है जो हमें बताते हैं कि हम ऐसी दुनिया बना सकते हैं अध्यात्म के आधार पर। सतयुगी दुनिया जैसा कि हमारे आदरणीय मोहन सिंगल भाई साहब बता रहे कि जहां पर क्राइसिस नहीं होंगे, दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, ऐसी सतयुगी दुनिया जहां 3 C नहीं होंगे। पहला, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, कोई केओस नहीं होगा, और तीसरा, कोई क्राइसिस नहीं होंगे। ये 3 C नहीं होंगे, पर 3 और दूसरे C होंगे, और इसकी जगह 3 C होंगे, वो होगा कॉपरेशन, कंपैशन और कंटेंटमेंट। ये 3 C होंगे और ऐसी दुनिया में हमें चलना है तो ये वैल्यूज हमें अपनी जीवन में लानी होंगे। पर ये वैल्यूज जीवन में लाकर क्या ऐसे कोई एग्जाम्पल हमारे बीच है? हाँ, हमारे बीच आज भी ऐसे एक उदाहरण मंच पर बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को परमात्मा ज्ञान को ही अपना ज्ञान, परमात्मा विचार को अपना विचार बनाया, परमात्मा राह को ही अपनी मंजिल बनाया है, आध्यात्म को जीवन का आधार और मूल्यों को जीवन का श्रृंगार बनाया है। हमारी संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल परम आदरणीय श्रद्धेय ब्रजमोहन भाई जी हमारे बीच एक दिव्य आभा के साथ उपस्थित हैं। हम सभी आपके ज्ञान, आपके अनुभव के द्वारा आज के विषय की स्पष्टता को समझना चाहेंगे। हम जोरदार तालियों से, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका स्वागत करते हैं। हम सबकी तालियों की आवाज हमारी जानने की उत्कंठा को बता रही है, तो जितनी उत्कंठा तीव्र है उतनी तालियों की आवाज भी हमारी तीव्र होनी चाहिए। परम आदरणीय श्रद्धेय ब्रजमोहन भाई जी, जो अध्यात्म का प्रैक्टिकल स्वरूप है, उस अध्यात्म के प्रवाह को हम सभी अभी महसूस करेंगे।
परमपिता परमात्मा के द्वारा इस धरती पर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्थापित किए हुए ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक डिमॉन्स्ट्रेटिव सेशन जो आज का सभा है, इसमें पधारे हुए प्यारे परमात्मा के अपने घर में आए हुए परमात्मा के अपने बच्चे कितने भाग्यशाली, कहा जाए कि पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं आप सभी मंच पर और सामने बैठे हुए कि इतनी सारी बातों को अपने जीवन में जानते हुए, इतनी सारी बातों के अनुभवी होते हुए, इतनी सारी बातों में अपनी अपनी विश्वविद्यालयों की विशेषज्ञता प्राप्त करके बाद उसको कार्यान्वित करने वाले, और आज के सेशन में भी इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने वाले, इतने अच्छे अच्छे प्रॉमिस करने वाले, ताली बजाने वाले, क्षण भर के लिए दिल में प्रसन्न होने वाले कि भाई ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्यारे बहनों और भाइयों, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और इसमें जो कुछ भी बताया जाता है वो बहुत इंग्लिश में विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिसमें यूनिवर्स का, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान, जिसमें यूनिवर्स की हिस्ट्री और यूनिवर्स की ज्योग्राफी आती है, अर्थात सारे ब्रह्मांड में हम कहाँ कहाँ थे, कहाँ यहाँ कैसे पहुंचे, और हिस्ट्री मैंने हम किस किस कहाँ से चले, किस किस युग से चले, कहाँ कहाँ चल के यहाँ कैसे पहुंचे, उसका ज्ञान थोड़े से समय में हमको मिल जाता है और उससे पता लगता है और बड़ी हंसी आती है और बड़ी खुशी भी होती है कि हम शब्द तो बड़े अच्छे अच्छे प्रयोग करते हैं, उसके लिए बड़े बड़े योजनाएं भी बनाते हैं, दृष्टिकोण भी बनाते हैं, पर परमात्मा के ज्ञान के आगे हंसी आती है कि हम क्या कर रहे हैं, परमात्मा क्या चाहता है। तो आज के विषय को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं न्यू एरा की बात करता हूं। हम सब न्यू एरा की बात करते हैं, हर साल हम न्यू ईयर भी मनाते हैं, हर बार एक नई सरकार भी आती है, हर दशक के बाद कोई ना कोई नई योजनाएं भी बनती हैं, हम हर चीज को नए का नाम दे देते हैं, दिल्ली बनती है तो फिर न्यू दिल्ली बना देते हैं। सोचने की बात है, जरा गौर से सोचिए, न्यू जब हम कहते और चाहते हैं उसका मतलब है कि ये पुराना है, ओल्ड है, और ओल्ड में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण हम उसको त्यागना और न्यू को अपनाना चाहते हैं। अब जरा गौर से सोचिए, अगर कोई चीज ओल्ड होना शुरू हो जाए, अगर कोई चीज एक बार ओल्ड होना शुरू हो जाए तो उसके बाद क्या वह और ओल्ड ही होती जाएगी, ओल्ड ही होती जाएगी, या कभी न्यू बन जाएगी? ये सोचने की बात है। आज सारे ही विश्व के सभी मानव क्या कर रहे हैं, ओल्ड को न्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी हो ही नहीं सकता। तो क्या हो रहा है, हम अपनी तरफ से समझते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ करता है उसका कुछ फल देखता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप देखते जाएं कि जितना जितना समय बीतता जाता है, क्या ये दुनिया ओल्ड होती जाती है और ओल्ड होती जाएगी, या कभी नई भी बन सकती है? किसी भी प्रकार से देख लीजिए। मान लीजिए, मोटी बात लेते हैं कि हमने अपनी समझदारी से अपने हवा और पानी को दूषित कर लिया, ठीक है, कर लिया। एक एग्जांपल लेते हैं। अब आगे चलते जाइए तो आज के सिस्टम के अनुसार आप लाख यत्न कर लें, क्या ये हवा और पानी जितना हमने दूषित किया है आगे उससे ज्यादा दूषित होने वाला है, या वो पुराना नया जो था कभी वो बनने वाला है? एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मानव भी जब एक बार जन्म ले लेता है तो कुछ भी कर ले, चाहे वो डॉक्टर ही हो, कोई पहलवान ही हो, उसको स्वाभाविक तौर पे नेचुरल डिके होना आवश्यक है। तो जब सब कुछ नेचुरली डिके हो रहा है तो क्या इस डिके को हम रिवर्स कर सकते हैं, रोक सकते हैं? तो फिर न्यू एरा की डेफिनेशन क्या है, हमें बहुत गौर से सोचना चाहिए कि किसी पुराने व्यक्ति को लाल कपड़े पहना दो तो जवान नहीं हो जाता। इसी प्रकार से जब चीज पुरानी हो रही है, हो रही है, होती ही जानी है, तो न्यू एरा कैसे आएगी? हम अपने अपने संकुचित दृष्टिकोण से सोच सकते हैं, मैंने इसको नया कर दिया। वास्तव में कुछ नया नहीं हो सकता। स्वाभाविक तौर पर कल आप रिसेप्शन सेशन में यहां आए थे, बहुत सुंदर सुंदर गीत सुने, बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनी। आज हम केवल मॉर्निंग सेशन में ही आए हैं। जरा सोचिए, कल से आज हम एक दिन पुराने नहीं हो गए? गौर से सोचिए, ये हॉल भी पता नहीं लगता और हम भी एक दिन पुराने हो गए, लेकिन इतने स्लो गति से हुए हैं कि हमें पता नहीं लगता। हम शीशे में देखकर अपने आप को रोज मुस्कुराते हैं कि मैं वही हूं, पर शीशा मुस्कुराता है कि तुम वही नहीं हो। तुम क्या, मैं भी वही नहीं हूं। इसलिए हमें ये सोचना होगा कि आखिर सारे अपने इतिहास को देख लें, सारे अपने शास्त्रों को देख लें, कहीं पर कहीं न्यू इरा का कोई वर्णन आता है, तो आप पाएंगे कि एक भगवद गीता है। सारे शास्त्रों में एक भगवद गीता है जिसको सर्व शास्त्रमय शिरोमणि कहा गया है, जिसमें भगवान के महावाक्य कहे गए हैं, उसमें ये जिक्र आता है कि कौन कैसे न्यू इरा को बनाते हैं। और उसमें साफ साफ कहा गया है कि ये मनुष्यों का काम नहीं है। मनुष्य तो रचना है, मनुष्यों को भी श्रेष्ठ मैं बनाता हूं। और अगर इस सारे ब्रह्मांड में, जिसमें आपको वर्णन किया गया, प्रकृति भी आती है, तत्व भी आते हैं, मानव भी आते हैं, वनस्पति भी आती है, सब प्राणी आते हैं, वो भगवान कहते हैं कि मैं आकर के पहले तो पुराने को समाप्त करता हूं, और समाप्त करने से पहले नए की बीज लगाता हूं। ये सब जानते हैं, मुझे श्लोक वर्णन करने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पुराने को नया नहीं किया जा सकता, पुराने को समाप्त करके ही नया शुरू किया जाता है, उसको हम न्यू कहते हैं। रूप बदलने लेने से हम इस सत्यता को नकार नहीं सकते कि पुराना तो पुराना ही होता जाएगा। और उस भगवान का शुक्र है जो किसी पॉइंट पर आकर के उस पुराने को कंपल्सरीली समाप्त करके नए की रचना करते हैं। और यही उस परमात्मा का काम है, क्योंकि चक्र के क्रम में, साइक्लिक सिस्टम में, पुराने के बाद नया आता है साइक्लिकल में, क्योंकि उसको अगर शाश्वत चलना है। मैं इस फिलॉसफी में नहीं जाता, इससे क्या पता लगा? अब गीता में तो लिख दिया, अब हम सोचें कि वो नई इरा आने का टाइम कौन सा है। तो गीता को अगर पढ़ेंगे, उसमें तो लिखा हुआ है लाखों साल की बात, कितने लाख साल के युग हैं, फिर एक कल्प उतने लाखों साल का है, और ब्रह्मा जी का दिन 1000 कल्प का है, इत्यादि इत्यादि। तब तो आप सोचेंगे भी अभी हमारे बस का तो नहीं है। लेकिन वो गीता एक ऋषि ने लिखी है, वेद व्यास जी ने, उसमें हिंट है, सिस्टम बताया गया है कि ये है। लेकिन वो सच्चा गीता का भगवान, जिसका उसमें वर्णन आया है, वो इस बात को जानते हैं, बताते हैं, करते हैं और करवाते हैं। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आपको पूर्व वक्ताओं ने ब्रह्मा बाबा के बारे में भी सुनाया, ब्रह्मा कुमारी के बारे में भी थोड़ा सा सुनाया, इसके मिशन के बारे में भी थोड़ा सा सुनाया, और मैंने भी आपको कहा कि आप पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं कि आपके कदम ऐसी जगह पड़ गए हैं जहां आपको उस एक अलौकिक विचित्र अद्भुत पर इम्पॉसिबल दिखने वाले कार्य का जो हो रहा है, जिसका शुभारंभ हो चुका है, उसकी एक झलक आपको यहां मिल सकती है। अब आप देखिए ग्राउंड रियलिटी क्या है। आज पॉपुलेशन, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कुछ भी कर लें, जनसंख्या ही एक बहुत भयानक फ्यूचर का दृश्य दिखाती, विजन दिखाती है। और एक तरफ मनुष्य दुखी होकर भगवान को कह रहे हमें मुक्त कर दो, मोक्ष दे दो, क्योंकि अगर छोटी मोटी बातों से ऊपर जाएं तो इस दुनिया में बड़ा दुख है, लेकिन अपने लिए मोक्ष मांगते हैं, लेकिन दूसरे आत्मा को पैदा कर करके इस नरक में ला रहे हैं। कितना कॉन्ट्राडिक्शन है कि मैं तो इससे भागना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना भोगी हो गया हूं कि कोई भी आज के किसी भी प्रयास का कृत्रिम प्रयत्न, प्रयास जनसंख्या की भयानक वृद्धि को नहीं रोक सकता, और उससे अस्वच्छता और कई प्रकार की बातें पैदा होती हैं। सार ये है, अगर ये जनसंख्या इसी तरह बढ़ती जाए तो न्यू इरा का विजन क्या होगा? तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम तो है न्यू को शुरू करना है, तो जनसंख्या को फिर उस शुरू की लेवल पर लाओ जहां बहुत थोड़ी होती है। इसी प्रकार से हम जो कुछ भी हमने कहा, अच्छी अच्छी बातें, वो ठीक है, हम करना भी चाहते हैं, परंतु मूल प्रश्न ये है कि उनको करवाएगा कौन, करेंगे कैसे, ये बात है। कहा जाता है नॉलेज का अर्थ होता है रॉन्ग और राइट को जानना, अच्छे और बुरे को जानना। हमको बहुत नॉलेज मिल गई है, आज का मानव सारे पिछले पूर्वजों की नॉलेज रखता है, और हर एक कहता है हम जानते हैं, मुझे पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमें सदव्यवहार करना चाहिए, शुभ संकल्प रखने चाहिए, सब कहते हैं। पर विडंबना यह है कि हम अच्छे को भी जानते हैं, बुरे को भी जानते हैं, पर अच्छे को कर नहीं पाते, बुरे को छोड़ नहीं पाते। इसका क्या इलाज है? आप केवल जानते जाएं, हम विश करते जाएं, हम प्रतिज्ञाएं करते जाएं, आपस में बातचीत करते जाएं, हाँ भाई बहुत अच्छा है, हम सारे मिलकर हाथ उठा दें, बहुत अच्छा जी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? इसलिए सरस्वती को गॉडेस ऑफ विजडम कहा गया है, गॉडेस ऑफ नॉलेज नहीं कहा गया है। विजडम व्यक्त एक तरफा होती है, वो विजन एक ही होता है, उसमें दो दो चीजें नहीं दिखती। जैसे किसी आदमी की आंख खराब हो जाए तो उसको एक ही जगह दो दो दिखता है। इसलिए गहरी बात है। सार पे आते हैं कि भगवान कहते हैं आज की परिस्थिति को देखते हुए, जहां हमारी आयु, मानव की आयु इतनी अनिश्चित हो गई है, अनटाइमली डेथ इतना कॉमन हो गया है कि हम इसको मृत्यु लोक कहते हैं। और बातें तो छोड़िए, मानव अपने एक पूरे लाइफ टाइम के लिए भी श्योर नहीं, इंश्योरेंस कराता फिरता है। तो ऐसी दुनिया में जब हमें अपनी आयु का ही पता नहीं, रोग शोक से पीड़ित हैं, चारों तरफ देख लीजिए, हमने परमाणु शस्त्र तैयार कर लिए हैं, बहुत अकलमंदी की है, कहा जाता है विज्ञान का हम कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, हम विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय की बात कर रहे हैं, अरे अध्यात्म है कहाँ, नाम ले देते हैं स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी चीज है, स्पिरिचुअलिटी इज क्योर फॉर एवरीथिंग, वो स्पिरिचुअलिटी आएगी कैसे। अच्छा, तो अब हम और शॉर्ट करते हुए कहते हैं कि परमात्मा ने हमको ये बताया है कि ए मानव, ए मनुष्य, चिंता मत करो, जिस काल का भगवद गीता में जिक्र किया गया था वो समय अब आ गया है। खुशी की बात यह है, इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी चीजें, उसको मैं ही समाप्त कर सकता हूं, परित्राणाय दुष्कृताम, कि सब उल्टे काम करने वालों का विनाश जब तक नहीं होता तब तक दुनिया की सफाई नहीं हो सकती, अच्छा पनप ही नहीं सकता, परित्राणाय साधु नाम से मैं अच्छी आत्मा को पैदा करता हूं। जिस स्वर्ग की हम कल्पना करते हैं वो तो आएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है उस स्वर्ग को में जाने लायक और उस स्वर्ग को बनाने लायक वो समय स्वर्ग से पहले होता है। जैसे हम लोग एजुकेशन पहले लेते हैं बाद में प्रोफेशन में जाते हैं, भगवान कहते हैं स्वर्ग तो मैं लाऊंगा लेकिन उसके लायक मैं तुम आत्मा को ही बनाता हूं, क्योंकि मैंने ही तुम्हें बनाया था, लेकिन बहुत समय बीतने से जन्म लेते लेते धीरे धीरे हो गया। तो परमात्मा पहली बात ये बताते हैं फंडामेंटल जो हमारे काम की है, जो सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी ने अपनाई है, एक फंडामेंटल जिससे सारा गेम चेंज हो जाता है, जिससे हमारा विजन बदल जाता है, जिससे हमको एक डिफरेंट तरह की एनर्जी, जिस एनर्जी के द्वारा जो कुछ हम कह रहे थे कि माइंड से आप मैटर को चेंज कर सकते हैं, वो एनर्जी भगवान पहले उसको आइडेंटिफाई कराता है कि तुम, हम सब आत्मा हैं, हम सब शरीर नहीं हैं, हम सब आत्मा हैं। ये गीता का पहला लेसन है, गीता के भगवान का पहला लेसन है कि देखिए सिंपल भाषा में हम मैं और मेरा कहते हैं, मैं और मेरा, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा हाथ, मेरी बॉडी, मेरी बॉडी, किसकी बॉडी, तो आत्मा की, भारतवासी तो समझते हैं, लेकिन हम बहुत समय से अपने आप को बॉडी मान के चल रहे हैं, इसलिए हमारी सारी साइंस, सारी टेक्नोलॉजी, सारी स्पिरिचुअलिटी भी बॉडी पर आधारित है। तो यहां गीता के भगवान ने आकर परमपिता परमात्मा जो आत्मा है ब्रह्मा के द्वारा हमको ये सिखाया जो भी इसमें है कि तुम आत्मा हो, इससे टोटल आपका व्यू, आपका विजन चेंज हो जाएगा और उस आत्मा में समय के साथ कुछ अंदर कुछ वायरस आ जाता है जिसको भगवान विकार कहते हैं। तो हम आत्मा तो हैं लेकिन जो बेसिक चीज है जो सारी दुनिया के सब चीजों को चलाती है, हमारे शरीर को भी, उस वायरस को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तो आत्मा जानना भी काफी नहीं है। तो आज की बीमारी स्किन डीप नहीं है, बोन डीप नहीं है, सोल डीप है। इसलिए यहां पर आपको जो कुछ भी बताया जाएगा वो आपके जीवन को, और साथ साथ भगवान कहते हैं तुम अपने को बदलो, बाकी काम मैं कर लूंगा, परिवर्तन करने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। ओम शांति।
बहुत ही सारगर्भित शब्दों में सार की बात हमें बता दी कि ये परिवर्तन का समय चल रहा है, स्वयं परमात्मा पिता इस परिवर्तन के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम सभी को अपने परिवर्तन से मददगार बनना है, परिवर्तन करना है अपने अंतर जगत को, अपने दृष्टिकोण को। हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आए, हमें पढ़ाया गया त्रिकोण, चौकोण, षटकोण, दीर्घकोण, लघुकोण, पर दृष्टिकोण किसी ने नहीं पढ़ाया है। और ये दृष्टिकोण अध्यात्म हमें सिखाता है, जो हम यहाँ सीखने आए हैं, जो हमें परिवर्तन करना है। तो हम सभी अपने दिल के भाव तालियों से आपके प्रति उद्गार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। काफी समय से आप सभी बैठे और बहुत ही प्यार से और ध्यान से सभी सुन रहे, मैं देख रही हूँ, तो थोड़ा सा एक परिवर्तन कर लेते हैं। बहुत समय से मोबाइल सभी के अंदर है, तो मोबाइल बाहर निकाल लीजिए जरा सभी। तब खुश हो गए, चेहरे खिल गए सभी के कि मोबाइल शांत था, अब मोबाइल पे क्या करना है। मोबाइल का कैमरा ऑन कीजिए सभी और अपनी एक अच्छी सी सेल्फी लीजिए। आज आप यहाँ हॉल में बैठे हैं तो एक अच्छी सी सेल्फी लीजिए सभी। कितना अच्छी तरह ले रहे हैं ना सभी, कोई अपने बाल ठीक कर रहा है, कोई ड्रेस ठीक कर रहा है, थोड़ा चेहरे पे स्माइल लेके आए। अच्छी आई सेल्फी? अच्छी आई, अच्छी आई। खुश है अपनी सेल्फी देखकर? देखिए, जब सेल्फी लेने के लिए कहा तो एंगल बदला, थोड़ा सा मूवमेंट चेंज किए, थोड़ा सा अपने आप को ठीक किया, व्यवस्थित किया, पर ये जो हमारा बाह्य स्वरूप है इस पर ही हमने फोकस किया ना। पर यहां हमारी जो बात चल रही है परिवर्तन की, और एक विजन हम ले रहे हैं एक ऐसी दुनिया का जहां आपसी प्यार, स्नेह, सहयोग, एकता, ऐसे वैल्यूज होंगे, सुख शांति होगी। तो ऐसी दुनिया के लिए हमारी अंदर की स्थिति भी तो उतनी ही व्यवस्थित होनी चाहिए, अंदर भाव भी ऐसा ही होना चाहिए। तो बाहर की सेल्फी के लिए बाहरी रूप से ठीक करते हैं, अंदर सेल्फ को ठीक करने के लिए अंदर से भी अपनी सोच को, विचारों को ठीक करना जरूरी है। तो अभी हम सब थोड़ी सी देर के लिए अपनी जगह पर उठकर खड़े हो जाएंगे, हम सब अपने अंतर जगत को व्यवस्थित करेंगे, एक सुखद स्थिति में ले जाएंगे, अपने मन को एक टास्क देंगे, क्योंकि ऐसा विश्व हम सभी को मिलकर लाना है, प्रेम, शांति, एकता से भरा हुआ। तो हमारे अंदर सबसे पहला भाव चाहिए, जो हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है, वसुधैव कुटुंबकम, या सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। ये हम सब रोज बोलते हैं, कहीं ना कहीं सुनते हैं। तो ये थॉट हम सब आंखें बंद कर ले, हाथ जोड़ ले, मोबाइल नीचे रख दीजिए, हाथ जोड़ के बहुत प्रेम से कुछ पल के लिए ये थॉट अपने अंदर मन में क्रिएट करेंगे हम सभी, कि इस विश्व में चाहे कोई भी देश हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति का इंसान हो, पर हर व्यक्ति, हर प्राणी के प्रति मेरे अंदर बहुत सुंदर, शुद्ध और शुभ भाव है कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो।
सभी हो दुखी और सबका भला हो,
सभी हो सुखी और सबका भला हो,
दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो,
दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो,
सभी हो दुखी और
सुंदर भाव के साथ अब अपनी सेल्फी लीजिएगा। फिर से लीजिए सेल्फी सभी, क्योंकि चेहरे के भाव सबके बहुत सुंदर है और बदल चुके हैं। ये सेल्फी आपको याद रहेगी और इसे जरूर सेव कीजिएगा। इसी सुंदर भाव और भावना के साथ हम सभी आगे बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम में। हमने सभी ने संकल्प किया कि हमारी संस्था की चीफ आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी हमारे बीच पहुंचे। वो प्रैक्टिकल रूप में, भौतिक रूप में तो हमारे बीच नहीं आए, परंतु उनका मैसेज जरूर हमारे बीच आ गया है, जो मैसेज मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी। छोटा सा ही पर बहुत ही प्रेरणादायी मैसेज है हम सभी के लिए। दादी जी कह रहे हैं, उनकी वाणी को हम सभी महसूस करेंगे। 17 मई 2024 को साइंटिस्ट, इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट विंग की कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन में ये दादी जी का उद्घाटन भाषण है। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि ज्ञान सरोवर में सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के दौरान नए युग के लिए नया दृष्टिकोण विषय पर साइंटिस्ट, इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट विंग की कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज और कल का ही सारा ये खेल है। आज हम इस कलयुगी दुनिया में बैठे हैं, कल सतयुगी दुनिया में होंगे। ऐसी दुनिया में जाने के लिए राजयोग का अभ्यास करना है, विकारों का त्याग करना है, दिव्य गुणों को धारण करना है। सदा खुश रहो, सबको खुशी बांटो। नकारात्मक चिंतन से जीवन दुखी बन जाता है, सकारात्मक चिंतन से जीवन सुखी बन जाता। इस कॉन्फ्रेंस में ऐसी सकारात्मक चिंतन की विधि सिखाई जाएगी। कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी। हम सभी का भी दादी जी के लिए बहुत बहुत दिल का आभार, जो हमारे प्रति ये उद्गार उन्होंने हमारे बीच पहुंचाए हैं। जब विजन की बात करते हैं तो प्रकाश की जरूरत होती है। जितना प्रकाश अधिक होगा, विजन उतना ही क्लियर होगा। तो इस इनॉग्रल सेशन और इस कॉन्फ्रेंस का हम विधिवत उद्घाटन करने जा रहे हैं, दीप प्रज्वलित कर। दीपों की रोशनी जरूर हम सभी के जीवन में भी, हमारे आत्म जगत में भी रोशनी फैलाएगी। दीप प्रज्वलन के लिए सर्वप्रथम मैं हमारे सम्माननीय मंच को आमंत्रित करना चाहूंगी। इसके साथ ही साथ हमारे बीच और भी कुछ डिग्नेटरीज हैं, मैं जिनको मंच पर आमंत्रित करूंगी दीप प्रज्वलन के लिए। माननीय भ्राता अरुण मोदी जी, सीजीएम गेल इंडिया लिमिटेड वडोदरा। माननीय भ्राता दीपक गुप्ता जी, डायरेक्टर गेल इंडिया लिमिटेड। भ्राता एमआर शर्मा जी, सीजीएम गुड़गावा मेट्रो। माननीय भ्राता गोपीनाथ जी, नवी मुंबई यूजीसी कमिटी मेंबर। माननीय भ्राता भूदेव सिंह जी, ईडी आईजीएल। साथ ही हमारे कुछ और भी बीके गेस्ट भी है हमारे बीच, आदरणीय स्वामीनाथन भाई, आदरणीय अरुण भाई, आदरणीय अरुणा बहन जी वडोदरा से, प्यारी ज्योति बहन पानीपत से, आदरणीय निर्मला दीदी करनाल से और शैला बहन अंबाला से। आप भी सभी मंच पर, दोनों तरफ दीपक रखे हुए, आप सब भी मंच पर आमंत्रित है। और मंच को मैं आमंत्रित करती हूँ, जो बीच में हमारा सिंबॉलिक रखा हुआ है, आप सभी वहाँ पर ये दीप प्रज्वलित करने आएंगे। और सभा में आप सभी है, सबका मंच पर आना संभव नहीं, तो हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, क्योंकि ये पूरी सभा ही एक बहुत सुंदर मंच है। और आप सभी के हाथ में ऑलरेडी दीपक है, तो उसको प्रज्वलित कर लीजिए, अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लीजिए। आदरणीय भ्राता शर्मा जी, गुजरात पेट्रोलियम अहमदाबाद, आपको भी निमंत्रण है, आप मंच पर जरूर आए। जो हमारे बीके गेस्ट हैं और सभा से कुछ और गेस्ट को हमने निमंत्रण दिया है मंच पर आने का, तो मंच के दोनों तरफ जो दीपक रखे हुए हैं, आप सभी वहां पर आएंगे तो फोटो लेने में भी बहुत अच्छा होगा, आप सभी फोटो में दिखाई देंगे।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
जो आप सभी को यहाँ पे विजडम शुरू हुई है और जिसके आप सभी ने संकल्प भी किया है जरूर कि आगे भी हम इसे जरूर अपने जीवन में उतारेंगे, अपनाते रहेंगे, इसके लिए आप सभी को रेगुलर मेडिटेशन टिप्स दी जाएंगे, कुछ विजुअलाइजेशंस भी भेजे जाएंगे, साथ ही प्रैक्टिकल आप सभी के लिए एक बहुत सुंदर ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप टोटल आपको कॉन्फ्रेंस के वीडियोस भी रहेंगे, रेगुलर आपको कुछ विजन शेयर किए जाएंगे। आप मोबाइल से, आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके इस ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आप क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए। कहते हैं कि अगर मन का विश्वास हो तो कठिनाई भी आसान हो जाती है, सोच में सकारात्मकता हो तो हर जीत महान हो जाती है, दिल में उमंग हो और होठों पर मुस्कुराहट हो तो जीवन की हर राह गुलिस्तान हो जाती है। ऐसे ही मन में अटूट विश्वास, दिल में उमंग और होठों पर मुस्कुराहट लिए हुए सदा आगे बढ़ने और जीत हासिल करने वाले हमारे बीच हमारे माननीय भ्राता संजीव कुमार जी उपस्थित है, जो विशेष रूप से न्यू दिल्ली TCIL में CMD के पद पर कार्यरत है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ हम सभी की ओर से, आप अपने विचार अपनी शुभकामनाएं हम सभी के बीच में रखेंगे और हम सभी जोरदार ताली से आपका स्वागत करते हैं।
परम आदरणीय ब्रिजमोहन जी, बहन डॉक्टर सविता, बहन आशा दीदी, आदरणीय मोहन सिंगल जी, आदरणीय भारत भूषण जी, आदरणीय नेविले, आदरणीय राहुल प्रसाद जी, आदरणीय पीयूष जी, आदरणीय नरेंद्र पटेल जी, यहाँ उपस्थित देश विदेश से पधारे हुए आदरणीय सभी अतिथिगण, आप सभी को सादर नमस्कार। ओम शांति। आज का युग जिसमें हम रह रहे हैं उसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के नाम से जाना जाता है, जिसको कि डिजिटल कनेक्टिविटी का युग भी हम कहते हैं। तकनीकी के माध्यम से जो है आज के समय में जो है इसने हमारे रहने का तरीका, हमारा कार्य करने का तरीका, हम कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वो सभी बदल दिया है। एक सब हमारे सामने एक छोटा सा उदाहरण मोबाइल फोन का है कि एक मोबाइल फोन की वजह से जो है आप एनी टाइम एनी वेयर किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो है आप जो है उसी मोबाइल को जो है एज ए टॉर्च भी यूज करते हैं, उसी मोबाइल को आप जो है एज ए कैमरा भी यूज करते हैं, और इसी मोबाइल के माध्यम से जो इसमें UPI ऐप होती है उसने हमारा किस तरह से हम जो है सामान खरीदते हैं, कैसे हम पेमेंट करते हैं वो भी चेंज कर दिया है। जो अब हम अगर पर्स भी घर पे भूल जाते हैं जो है तो तकनीकी के माध्यम से आप मोबाइल फोन के माध्यम से कोई भी जो है खरीदारी कहीं भी कर सकते हैं।
लेकिन साथ में जो है इस जो डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे इंप्रूव हो रही है, तकनीकी इंप्रूव हो रही है, हमारा जो इनर सेल्फ है या हमारा जो स्पिरिचुअल इमोशनल कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, वो भी कम हो रहा है। जय हम अक्सर देखते होंगे, पहले अगर किसी को जय जन्मदिन की बधाई देते थे तो हम उसके घर पे जाते थे या उसको फोन कर लेते थे जय, लेकिन अब मोबाइल के युग में जो है आप जो है एक सिर्फ उसको मैसेज के माध्यम से ही जो है हैप्पी बर्थडे या कोई भी दूसरा अगर ओकेजन होता है वो बोल देते हैं। तो एक जो हमारा एक इमोशनल कनेक्ट है जय, वो शायद उसमें नहीं होता जो कि एक हमारी फिजिकल प्रेजेंस से होता था जय। तो एक तरफ जो है तकनीकी के माध्यम से हमारी जिंदगी की जो है जो समस्याएं हैं उनका समाधान होता है, वे साथ में उसके अपने दुष्परिणाम भी होते हैं। और एक ये मोबाइल का एडिक्शन जो है आजकल काफी उसके बारे में बातचीत की जाती है कि कैसे लोग जो है मोबाइल के एडिक्ट होते जा रहे हैं, कि थोड़ी थोड़ी देर में जो है मैसेज भी देखते हैं और वो शायद मैसेज चाहे महत्वपूर्ण भी ना हो जाए, बट इट हैज बिकम आवर हैबिट। मैं आपको एक दो चीजें अपने अनुभव के द्वारा साझा करना चाहूंगा। एक तो जिंदगी में जो है हम जो भी कार्य करते हैं, कई बार हमें लगता है कि ये कार्य बहुत ही छोटा है या गौण है जय, लेकिन उस छोटे से छोटे कार्य के प्रति भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य निहितार्थ होता है जय। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सफाई करने का कार्य करता है जय, तो हमको लगता होगा ये सफाई करने का कार्य बहुत छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस सफाई के माध्यम से वो इंसान जो है कितने लोगों को एक स्वस्थ जिंदगी जीने के जो है अवसर प्रदान कर रहा है, ये उसका एक बहुत बड़ा निहितार्थ है उसके पीछे जो है। और हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि उसने अपने कार्य के द्वारा कितने लोगों को जो है स्वस्थ रहने का अवसर दे रहा है जो है। इसी तरह अगर कोई ड्राइवर है जो है और वो मान लिया एम्बुलेंस का ड्राइवर है, तो अपनी ड्राइविंग के द्वारा वो कितने लोगों की जिंदगी बचाता है, उन पेशेंट्स को जो है टाइमली जो है हॉस्पिटल में ले जाकर जो है, या किसी एक्सीडेंट के केस को जो है टाइमली हॉस्पिटल में, तो ही इज एबल टू सेव द लाइफ ऑफ सो मेनी पीपल, सो ही इज कंट्रीब्यूटिंग ए लॉट बाय सेविंग लाइफ ऑफ पीपल इन द सोसाइटी जो है। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन फैसिलिटी जो है, वी थिंक इज ए मेयर यू नो सिंपल सर्विस जो है, बट थ्रू ए टेलीफोन पुलिस हेल्प, इट हेल्प द पुलिस इन मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, इट हेल्प यू जो है टू मेक ए टू गेट इन टच विद पुलिस इन केस यू आर इन डिस्ट्रेस जो है, टू सीक सपोर्ट फ्रॉम द पुलिस जो है, इट हेल्प यू टू कनेक्ट विद योर नियर एंड डियर वन इन टाइम ऑफ नीड, ए सिंपल इंटरनेट फैसिलिटी जो है हेल्प्स जो है यू ए चिल्ड्रन जो है टू डू देयर होमवर्क, टू गेट प्रॉपर एजुकेशन, इट हेल्प्स ए डॉक्टर जो है टू कंसल्ट another doctor in case of some complicated case. So through these services or the work you do, there is a bigger objective which you are fulfilling for the society. So we should feel proud and self-satisfaction when we are doing it, that I am contributing to a bigger goal for the society. And whenever you feel some let down और सम डिमोटिवेशन इन लाइफ जो है, द कंट्रीब्यूशन यू आर मेकिंग टू द सोसाइटी थ्रू योर वर्क जो है, यू शुड फील प्राउड ऑफ दैट एंड यू शुड फील मोटिवेटेड ऑफ दैट। सेकेंड इश्यू आई वुड लाइक टू से, एट टाइम इन अवर लाइफ जो है वी फील दैट वट एवर वी आर डूइंग वी आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ, वी आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ धर्म, बट स्टिल वी end up facing certain problems in life jay, from somebody jay, who may not be happy or who may not be comfortable jay, with your right work or with the path you are following jay, or dharma path you are following jay, and you face difficulties jay. It is said jay, that satya mein jayate ki ant mein jay, satya ki jeet hoti hai। मैं यहां पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर सत्य की जीत भी नहीं हुई जाए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गलत आचरण की वजह से, अगर हमारे अधर्म के रास्ते पे चलने की वजह से कितने लोगों को दिक्कत होगी जाए, तो हम जो है सही रास्ता और धर्म का आचरण अगर करते हैं और उन परेशानियों की चिंता नहीं करते या उनको टॉलरेट कर लेते हैं, तो हम काफी बड़ा समाज के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों को परेशानियों से बचा रहे हैं जो हमारे गलत कार्य करने की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक
डिस्ट्रिक्ट का जो है एसपी सिटी है, एसपी है, और उसके ऊपर कहीं प्रेशर आता है कि आप जो है एक अपराधी को जो है छोड़ दीजिए, और वो प्रेशर में आकर ऐसा करता है तो उस अपराधी का मनोबल बढ़ता है और वो दोबारा जो है अपराध कार्यों में लिप्त होता है और समाज के पता नहीं कितने लोगों के लिए परेशानियां पैदा करता होगा जो है। लेकिन वो अपने सही आचरण से जो है उस अपराधी को सजा दिलाकर जो है हो सकता है उसको ट्रांसफर हो, उसका जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कई बार खराब कर दी जाती है जो है, बट मेरे ख्याल से वो परेशानियां छोटी हैं और आप अगर गलत कार्य करेंगे उसकी वजह से समाज के ऊपर जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है जो है दैट इज मच मोर बिगर ऑब्जेक्टिव है देन टॉलरेटिंग दोज स्मॉलर इश्यूज है। आई लाइक टू शेयर सम ऑफ माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वेन आई ज्वाइन टेलीकॉम सेक्टर जो है इन अर्ली 90s एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क एट ए प्लेस जो है वे आर इट यूज टू बी कंसिडर वेरी हार्ड पोस्टिंग एंड नो बडी यूज टू प्रीफर टू वर्क इन दो सिचुएशन है। सो माई फर्स्ट पोस्टिंग वॉज इन हिमाचल एंड आई वॉज गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड टेलीकॉम फैसिलिटीज थ्रू सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इन रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री दैट इज J&K हिमाचल एंड प्रेजेंट उत्तराखंड। Now working in those areas when I started visiting those areas I used to feel there were many places which were not connected with the roads those places were 30 km 50 km from the nearest road head at many places there were no electricity there were many places where there was no school there were many places where there were no hospitals so I used to feel why government is spending money to provide telecom facilities But when we started operationalizing those telecom facilities in those areas, the kind of joys and happiness those people used to feel with those facilities and they were able to connect their families from those remote areas, that satisfaction was immense. And I used to feel that this is what the worth thing doing in life than sitting in a comfort place of metro areas. Similarly, I got the opportunity to work in Northeast also, and when I got the posting in Northeast, I was told that's a very difficult area, there's an insurgency, and the insurgents ask a cut of 25% from your side. You have to pay them, otherwise they create problems. I went there, I worked for 2 years, and I went to those places where no officer might have visited ever. Contributed in improving the telecom facilities in some of the most difficult and remote areas which were insurgent affected areas. I can say with proud that nobody ever gave a single paisa and this gave a lesson to me that if you do your job honestly and you work hard and sincerely, the society and the people will support you, they will not create a problem for you. Even an insurgent need somewhere your services as well, maybe. So he get benefited from that. It is if you don't do your job honestly and you don't work hard, then yes, you are doing disservice to those people for whom you are given the responsibilities. And that's why then you may face those problems. But I think if you follow the right path, there will not be any problem in your life. Even if there are problems, you will have the self-satisfaction that whatever you have done in your life, it was worth doing it, it was what you have been sent for on this earth. With these few words, thank you very much. Om Shanti. Through this platform, I'd like to thank you Bhai Piyush Ji and Behan Girija Ji, who often come to TCL campus among our employee, and they, through their wisdom, they guide us and give us the motivation to follow the right path in life. I give my thanks to Brahm Kumari and to both Piyush Ji and Behan Girija for their act of kindness. Thank you.
बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता संजीव कुमार जी का, आपने बड़ी सुंदर दो तीन बातें हम सभी को समझाई सिखाई। सबसे पहली बात कि कोई भी व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं है, न कोई कार्य छोटा बड़ा है। जो भी जिस कार्य को कर रहा है उसके महत्व को समझना, और उसका दिल से शुक्रिया करना। जो हमने अभी सीखा ग्रैटिट्यूड सिर्फ प्रकृति के प्रति नहीं, परंतु हम सभी आपस में एक दो के प्रति भी ये ग्रैटिट्यूड अगर शेयर करें तो इस कॉन्फ्रेंस का, यहाँ का माहौल, इसमें और चार चांद लग जाएंगे। है ही यहाँ का इतना प्यारा माहौल, लेकिन अगर हम सब आपस में एक दो को इन दो तीन दिनों के अंदर, भले हम सभी अलग अलग जगह से आए हैं, एक दूसरे को पहचानते नहीं पहचानते, कई रूम्स में भी अलग अलग है, कईयों की तो पहचान हो गई होगी, पर कोशिश कीजिए कि एक दो से पहचान बढ़ाएं, एक दूसरे से मिलें और एक दो को छोटी छोटी बातों के लिए ही हम शुक्रिया करें। मैं एक बहुत सुंदर मैसेज पढ़ रही थी कि इंसान का हृदय भी किसी टच स्क्रीन से नहीं है। अगर आप एक बार शुक्रिया कहकर तो देखो कैसे वो अपने भाव आपके आगे व्यक्त करता है। आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी हमारे बीच से विदाई ले रहे हैं, तो हम सभी तालियों से आपको विदाई देते हैं। आदरणीय सविता दीदी भी हमारे बीच आ चुके थे, शुरू में नहीं थे, तो मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि दीदी को पुष्प गुच्छ और बैच देकर स्वागत करेंगे हमारे बीच में। हम सभी तालियों से आपका स्वागत करते हैं। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। जरूरत है हम अपने नजरियों को बदले, दुनिया को बदलने की कोशिश न करें, अपने आप को बदले तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और ऐसा ही एक दृष्टिकोण लिए हमारे बीच में ऐसे ही एक व्यक्तित्व है, माननीय भ्राता राहुल प्रशांत जी, जो IOCL वडोदरा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड रिफाइनरी हेड के रूप में कार्यरत हैं। हम आपके अनुभव और आपके विचार सुनेंगे। हम तालियों से आपका स्वागत करते हैं।
मंच पे आसीन विशिष्ट जन, परम आदरणीय राजयोगी श्री ब्रिजमोहन जी, जो अभी प्रस्थान हुआ, श्री मोहन सिंघल जी, राजयोगिनी दीदी आशा दीदी, सविता बेन, श्री पीयूष जी, श्री नरेंद्र भाई पटेल एवं माधुरी बहन जी, श्री भारत भूषण जी, संजीव कुमार जी, भ्राता निवले हॉटकिंगटन जी जो यूके से पधारे, और समस्त भाई और बहनों इस सभा में जो उपस्थित हैं, आप सबका बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ब्रह्म कुमारी सेंटर वडोदरा में बाजवा और अटलाद्रा, उन दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप ये शिविर जो है SEA जरूर अटेंड कीजिए। काफी दिनों पहले उन्होंने मुझे कहा था, और मुझे आकर बहुत बहुत प्रसन्नता हुई कि मैं इस कॉन्फ्रेंस का एक पार्ट बना। पहले मैं सोच रहा था कि इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और आर्किटेक्ट SEA ये कॉन्फ्रेंस क्यों हो रहा है, और ये जो टाइटल भी जो है आप सब्जेक्ट देखेंगे, न्यू विजन फॉर न्यू एरा, इसमें इनका क्या योगदान। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट, इन्होंने जो कुछ भी आज तक किया वो समस्त मानव जाति और विश्व के कल्याण के लिए किया। तो मैं चाहूंगा कि इन सब के लिए एक जोरदार अभिनंदन तालियों से करें। मैं यह बात सबको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप सबसे पहला आविष्कार जो आप देखेंगे वो अग्नि का हुआ, हजारों लाखों साल पहले। मानव जाति की जिंदगी बहुत आसान हो गई। उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ, और अच्छा और आसान हो गई। तो आगे है सतत एक विकास का क्रम चलता रहा, और अब आधुनिक दुनिया में आएंगे तो बिजली का आविष्कार हुआ, हमने पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन किया, सारे जगह में बिजली पहुंची और जिंदगी आसान हो गई। कभी औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई, उसमें स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। इस तरह से और भी जिंदगी आसान होती जा रही है, और भी इस विकास के क्रम में काफी सारे अनुसंधान हुए, आविष्कार हुए, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट ने नए नए चीजों, नए नए प्लांट को उन्होंने कमीशन किया, बनाया। ये सब किसके लिए? मानव जाति की सुख सुविधा और कल्याण के लिए। ये सारे चीजें हुई, लेटेस्ट जैसे मोबाइल की भी बात हो रही थी, दूर संचार में जिंदगी आसान हो गई, पलक झपकते आप कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हो पूरे दुनिया में। निकोल टेस्ला ने बहुत पहले कह दिया था, आई थिंक 1936 या 39 में, कि आने वाले समय में जो कम्युनिकेशन का जो डिवाइस होगा वो आपके छोटे से पॉकेट में समा जाएगा, और ये सच साबित हुआ। इस प्रगति के दौरान जब विज्ञान और मानव एक साथ चलते चलते दौड़ते दौड़ते एक शिखर तक पहुंचे, उस समय कुछ देर के लिए रुके और कहा कि भाई हमने बहुत सारी चीजें कर ली लेकिन कुछ छूट रहा है। तो मनुष्य ने कहा क्यों छूट रहा है, सारी चीजें तो हमें सुख सुविधा पहुंचाने के लिए की गई हैं, सारे आविष्कार सारी चीजें इसी के लिए बनाई गई, लेकिन कुछ हम भूल रहे हैं, मैंने नेचर के साथ क्या किया, प्रकृति के साथ क्या किया, और कुछ हद तक हम अपने आप को भी छोड़ा है पीछे। देखिए पॉल्यूशन हो रहे हैं, हमने पूरे प्रकृति को पूरे नेचर को जो है गंदा कर दिया, चाहे नदी हो चाहे आसमान हो चाहे हवा हो कुछ भी हो, उसके बदले हम कुछ नहीं दे रहे। अच्छा ये बात तो सही है, तो लेट अस डू समथिंग न्यू। तो आजकल का जो हॉट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, CO2 उत्सर्जन कम करो, नेट जीरो की तरफ जाओ, और फिर कुछ नए नए चीजें और नए नए इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जुट गए, सोलर पावर प्लांट हमने लगाना शुरू किया, विंड एनर्जी पर गए, अभी हाइड्रोजन पर जा रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन पर, कि आने वाले समय में जो बसें जो चलेंगी वो हाइड्रोजन से चलेगी, जो व्हीकल्स होंगे हाइड्रोजन से चलेगी। लेकिन इसका कोई एक अंत नहीं है, और ये विकास का जो पहिया है वो चलता रहेगा, हमारे आपके रोकने से रुकेगा नहीं। इसी समय जो स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म जो है उसकी जोत पड़ती है। अभी हमारे एक वक्ता ने बीच में एक बताया कि अपनी नीड्स को मिनिमम करना है। नई नई चीजें क्यों आ रही हैं? भाई कम्युनिकेशन मुझे चाहिए था, मैं बहुत जल्दी से कम्युनिकेट करूं किसी भी भाग में, मोबाइल का आविष्कार हो गया, और भी आगे होगा, एक ड्राइवरलेस कार्स की रचना होगी जो आने वाली है, कोई ड्राइवर नहीं रहेगा, आप बुलाइए बैठिए चले जाइए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट वो देखना हो। तो हमारी अपनी जरूरतें मिनिमम होनी चाहिए। मैं वापस पुराने युग में तो जा नहीं सकता जहां हमारे रिक्वायरमेंट बहुत कम थी, लेकिन इसी समय अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़ती है कि हमें अपने आप को मिनिमलिस्ट कैसे बनाएं, हमें जरूरतें जितनी कम रखेंगे उतना ही अच्छा हो। तो न्यू एरा के लिए जो विजन है, जो मेरी समझ में अपने आप को डेवलप करना, इनर सेल्फ को देखना, और हमारी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर एंड सोसाइटी, हम बदले में क्या दे रहे हैं। एक चीज, चूंकि मैं हार्डकोर इंजीनियर हूं, लेकिन यह मैं जरूर समझता हूं कि हम जो कुछ भी आविष्कार कर रहे हैं, जो भी चीज नई चीज ला रहे हैं, वो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम प्रकृति से, नेचर से मांग रहे हैं, उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं। अगर वो डेल्टा बड़ा होगा, वो डिफरेंसेस ज्यादा होंगे, तो कभी भी हम एक नए एरा का, नए दुनिया का सृजन या फिर हम सपना नहीं देख पाएंगे। इनर सेल्फ में डेवलप करने के लिए आजकल बहुत सारी कंपनियां इस पर भी काम कर रही हैं। अभी हमारे चेयरमैन जो बुक देते हैं मेरे बर्थडे के पर, माइंड योर हेल्थ, वो किताब आ रही है। सोशल मेंटल वेलबींग, उस पर फोकस आजकल जा रहा है। एथिकल वैल्यूज क्या है कंपनी की, उस पर ज्यादा फोकस है, रादर गोइंग फॉर मेकिंग ए प्रॉफिट एंड ऑल दिस थिंग्स। आजकल एक कंपनी की पहचान प्रॉफिट से नहीं होता। आप पर्यावरण के लिए, आपकी कंपनी क्या कर रही है, अगर आपने थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाया तो आप भले ही बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हो, उसका कोई मतलब नहीं। तो बहुत सारी कंपनियां, प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर्स हो, सब लोग इस एरिया में काम कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ नेचर के प्रति, हमारी भी जिम्मेदारी है, हम उसको वापस करें। आजकल के बच्चे भी जो हैं, जो नई जनरेशन सारी है, उसमें एक रिसर्च में था, 64% ऑफ मिलेनियल्स दे से दे वोंट वर्क फॉर ए कंपनी दैट डज नॉट शो स्ट्रांग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस। उनके उनके जो विजन्स हैं, उनकी जो चाहत है, वो अलग है। इनर सेल्फ को डेवलप करने के लिए डेफिनेटली जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं ब्रह्म कुमारीज के, जो अध्यात्म पर ज्यादा जोर देते हैं, और अपने आप को पहचानने के लिए, जब भी जितने भी व्याख्यान अभी तक हमने सुने, वो अपने आप को पहचानने की प्रोसेस में है। तो वो ऐसा नहीं है कि एक इंजीनियर या एक साइंटिस्ट ऐसा नहीं कर सकता है, वो अगर ऐसा करता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, तो डेफिनेटली वो अपने आस पास के इन्वायरमेंट को, अपनी कंपनीज को भी एक बेटर इन्वायरमेंट दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। कुछ दिन पहले, एक साल पहले की बात है, मुझे एक कोच असाइन किया गया, लाइफ कोच। मैंने सोचा कि ऐसा क्या है भाई, अब इस उम्र में कोच की जरूरत क्यों है। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम था सारथी, उसमें कोच में जो हमने सवाल पूछा, जैसा ये पूछते हैं कि आप क्या हो, इंजीनियर हो, किस पोस्ट पर हो, वो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप अपने टॉप 3 पॉजिटिव पॉइंट बताइए, 3 नेगेटिव पॉइंट बताइए, और आपने बच्चों से भी पूछिए, अपने वाइफ से भी पूछिए, अपने बॉस से भी पूछिए, अपने सबॉर्डिनेट से भी पूछिए, और फिर बताइए। दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी, बट इट वॉज ऑल फॉर एम्ड टूवर्ड्स डेवलपिंग माई सेल्फ, एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ एंड बींग ए बेटर पर्सन। सिमिलरली नेचर के बारे में जैसा बताया, पर्यावरण के विषय में हमारी कंपनी और बाकी कंपनी भी जरूर इस पर काम कर रहे होंगे। यहां माउंट आबू में मैंने देखा जो एक सोलर प्लांट लगाया गया है, और मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो काम हो रहे हैं उसी के थ्रू हो रहे हैं। दैट इज डेफिनेटली अ ट्रिब्यूट टू द नेचर। मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूं ब्रह्म कुमारी समाज का, माउंट आबू का, जिन्होंने हम लोगों को ये अवसर दिया और ये डिस्कशन करने का अवसर दिया कि हम एक बेहतर दुनिया आगे कैसे बना सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है आगे के जो दो सेशन होंगे वो हमारे लिए काफी फ्रूटफुल होंगे, और जरूर कुछ हम निकाल के लाएंगे कि एक बेटर एरा कैसे शुरू हो। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता राहुल प्रशांत जी का, आपने बहुत सुंदर बात बताई। विकास की गाड़ी के दो पहिया हैं, आंतरिक विकास और बाह्य विकास। हम बाह्य विकास तो तेजी से कर रहे, चक्का बड़ी तेजी से घूम रहा है, पर आंतरिक विकास का चक्र रुका हुआ है और इसलिए हम जिस स्वर्णिम दुनिया के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं वहां तक पहुंच नहीं रहे। तो हम शुरुआत करें अपने आंतरिक विकास की, जो आध्यात्म हमें सिखाता है। और आध्यात्मिक भूमि भारत भूमि है, हम सब मानते, पर हमारे बीच भारत भूमि से बाहर विदेश से उस आध्यात्म की झलक लेकर हमारे बीच यूके से हमारे ब्रदर नेविल आए हुए, जो अपने ग्रीटिंग्स शुभकामनाएं हमारे बीच में रखेंगे। और हम सभी जोरदार तालियों से आपका इस भारत भूमि पर वेलकम करते हैं, इस मंच पर वेलकम करते हैं।
ओम शांति एंड ग्रीटिंग्स टू रिस्पेक्टेड स्पीकर्स एंड कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेंट्स एंड गेस्ट्स। यू प्रोबेबली आर सरप्राइज्ड सम ऑफ यू टू सी एन इंग्लिश वॉलर on this platform, and I promise you that I won't speak for very long, but I do have a message I'd like to share, which is that many thousands of people like me, foreigners, have benefited over recent decades from the teachings that have come from India through the Brahma Kumaris of Raja Yoga. I've been practicing this for more than 40 years, and it made a huge difference in my work relationships and my family relationships, changing them from a neediness in trying to prove yourself to a different vision of the self, which is, then becomes more giving with others. And although some naturally have this good spirit, like Mr. Kumar spoke beautifully of the work that he'd done, with a very good spirit, and he gets the reward of that, of course, in the happiness that it brings. But the beauty of Raja Yoga is that it teaches us to draw on a happiness and strength from an internal dimension, a non-material dimension, the soul and the supreme soul. And that is so empowering because it's unlimited. Whereas all the happiness we take from the world around us, it's here today, gone tomorrow, sometimes as happiness, sometimes as sorrow. But when you learn to draw this beautiful power from Paramatma, then the sky is the limit for your happiness and your ability to live with others. Your humanity is restored in ways that many of us have felt a need to do. So I'm very, very grateful to the BKs for what they've done across the world especially, but coming here to India is also a huge pleasure. Om Shanti, thank you.
भले ही भाषा हमसे बिल्कुल अलग है, पर भावनाएं तो दिल से दिल तक पहुंचती है। कितने भावपूर्ण शब्दों में उन्होंने योग से क्या अनुभूति हुई, क्या प्राप्ति हुई, कितनी सरलता से, प्यार से हमारे बीच रखा। हम सब काफी देर से बैठे हैं, आपके अगल बगल वाले सभी बैठे हैं कि कोई चले गए हैं? अच्छा, आपके राइट साइड कौन बैठा है जरा देखिए, राइट साइड कौन बैठा है? कुछ चेयर शायद खाली है और कुछ के राइट साइड में कोई बैठा है। अच्छा, किस किस को याद है कि राइट साइड में कौन बैठा है? हाथ उठाइए। ओके, कौन बैठा है? परमात्मा पिता, क्योंकि हमने इस सेशन की शुरुआत की तो हमने उनका आह्वान किया कि हे परम पिता सर्वशक्तिवान, आओ और मेरे राइट साइड बैठ जाओ और इस सेशन को पूरा मेरे साथ अटेंड करना। तो भूल तो नहीं गए, बिठा तो दिया, पर उसके बाद हम कहीं और खो गए। जरूरत है उनको निरंतर याद करने की। अगर हमें उस स्वर्णिम दुनिया की ओर चलना है, स्वपरिवर्तन करना है, तो उनकी याद, उनका सानिध्य, उनकी शक्तियों की अनुभूति, और यही अनुभूति अभी हम थोड़ी देर के लिए करेंगे। हमारे बीच परम आदरणीय हमारे डॉक्टर सविता दीदी हैं, जो हमारे शांतिवन से हैं, राजयोगा सीनियर टीचर हैं। आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, पर फिर भी आपने आध्यात्म को अपने जीवन में पूरा उतारा और मेडिटेशन के एक्सपर्टीज हैं। तो हम आपके द्वारा उस परमात्मा अनुभूति को करेंगे, उनके साथ को महसूस करेंगे। तो सभी अलर्ट होकर बैठे, चाहे तो एक मिनट के लिए सभी खड़े हो जाए थोड़ा। हाँ, खड़े हो जाइए थोड़ा, बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, दोनों हाथ ऊपर कीजिए,
अच्छी तरह से स्ट्रेच कीजिए ऐसे, और परमात्मा पिता को अगर वो थोड़ा सा उड़कर ऊपर जा रहे तो पकड़ लीजिए, कैच कीजिए, नीचे ले आइए, दो तीन बार कीजिए। ठीक है, अभी आप बैठ सकते हैं और आदरणीय दीदी जी हमारे बीच हैं, हम बहुत सुंदर योग की अनुभूति करेंगे।
ओम शांति। जगत नियंता परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंचासीन माननीय अतिथि और सभा में उपस्थित आप सभी भाई और बहनें, इस विद्यालय की मुख्य शिक्षा सहज राजयोग है और योग भारत की प्राचीन विद्या है, और आज योग लोकप्रिय भी हो रहा है क्योंकि योग से हमारे जीवन में बहुत लाभ हमें मिलते हैं। मन शांत होता है, मन स्वस्थ होता है। स्वस्थ होने का अर्थ है कि हम सकारात्मक होते हैं, आशावादी होते हैं, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हमारा मनोबल विकसित होता है, आत्मा में अंतर्निहित गुणों और शक्तियों का विकास होता है, हमारा व्यक्तित्व भी विकसित होता है, हमारे संबंधों में सुधार होता है, हम तनाव मुक्त होते हैं। तो जब इतने अधिक लाभ हमें राजयोग के अभ्यास से अनुभव होते हैं तो निश्चित है कि हम चाहेंगे कि प्रतिदिन हम योग अभ्यास करें। और आज तो 70% बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, तो डॉक्टर्स भी ये एडवोकेट करते हैं कि मेडिटेशन किया जाए प्रतिदिन अपने जीवन में। तो राजयोग अभ्यास के दो चरण हैं। पहला चरण हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, हम अंतर्मुखी होते हैं, एक अंतर यात्रा है, हम अपने आप को देखते हैं कि मेरी कमी कहाँ है, मुझे कहाँ परिवर्तन लाना है। तो इसकी शुरुआत है स्व परिवर्तन से। सामान्यतः हम बाह्य मुखी होते हैं, हम दूसरों को ज्यादा देखते हैं, इसीलिए दूसरों की शिकायत हम ज्यादा करते हैं, क्या दूसरों को बदलना चाहिए। लेकिन राजयोग में ये परिवर्तन हमारे अंदर आता है कि हम पहले स्वयं में परिवर्तन लाते हैं, और दूसरा स्टेप है परमात्मा से संबंध का अनुभव करना, जो सर्वशक्तिवान है, शांति के सागर हैं। और जब ईश्वर से हमारा संबंध होता है तो उनकी शक्तियां हमें समाने लगती हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक बल्ब को हम तार के द्वारा जब पावर हाउस से जोड़ते हैं तो बल्ब में लाइट आ जाती है, वो प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ही आत्मा रूपी हमारी बैटरी जब मन बुद्धि के तार जो अदृश्य हैं उनके माध्यम से परमात्मा रूपी पावर हाउस से जुड़ती है तो वो ईश्वर की करंट हमारे में फ्लो होने लगती है और हम स्वयं को माइट स्वरूप अनुभव करते हैं। तो अभी हम सभी कुछ समय के लिए राजयोग का अभ्यास करेंगे। आप सभी सीधे होकर बैठें, रिलैक्स होकर बैठ जाएं, और जिन विचारों का मैं आपको दे रही हूं उन्हें आप अनुसरण करेंगे, मन ही मन उन्हें अनुभव करने का प्रयास करें। मन को चिंतन दीजिए, मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, मस्तक के मध्य में एक चमकते हुए सितारे के समान मैं ज्योति पुंज हूं। सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने कर्म करने के लिए मैंने इस शरीर का आधार लिया है। मैं अचर अमर अविनाशी शक्ति हूं। सत चित आनंद स्वरूप हूं। अपने निजी स्वभाव में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति में ही शक्ति है। शांति में ही सुख समाया है। शांति मुझे पसंद है। जो भी परिस्थितियां मेरे जीवन में अशांति उत्पन्न करती हैं, मैं अपने स्वयं के सत्य स्वरूप के अनुभव में स्वयं को स्थित करके शांति से ही व्यवहार करूंगी। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। मेरा निज धाम परम धाम है, जो इस भौतिक जगत के पार है। जहां सर्वत्र दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, मेरे परम पिता परमात्मा शिव इस धाम के निवासी हैं। वो मेरे ही समान ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, लेकिन गुणों में सिंधु के समान हैं। परमात्मा शांति के सागर हैं, उनकी समीपता में मेरा मन शांत होता जा रहा है। मैं शांति के प्रकंपन स्वयं में अनुभव कर रही हूँ। वो सर्वशक्तिवान है। परमात्मा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। जब ईश्वरीय शक्तियां मेरे साथ हैं, तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं जो परिवर्तन लाना चाहूं, वो ला सकती हूं। परमात्मा ही मेरे सच्चे माता पिता शिक्षक सतगुरु हैं। वो ही मुझे श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। मेरे मार्गदर्शक हैं, परम कल्याणकारी हैं। ऐसे परमात्मा से शांति और शक्ति का अनुभव लेकर मैं स्वयं को पुनः भौतिक जगत में अपने शरीर में अनुभव कर रही हूँ, लेकिन अब मेरा मन पहले से अधिक शांत है, शक्तिशाली है, जिसे मैं अपने कार्य व्यवहार में, स्मृति में रखूंगी। ओम शांति शांति शांति।
बहुत ही सुंदर सुखद अनुभूतियों में हम सब खोए हुए थे। आदरणीय दीदी जी ने हम सबके मन के तार कुछ देर के लिए ही सही, परंतु उस परमात्मा सत्ता के साथ जोड़ दिए थे, और जिसकी अनुभूति आप सभी ने बहुत ही अच्छी की होगी। ऐसी ही परमात्मा अनुभूति से भरपूर हमारे बीच सर्व की भलाई करने वाले शहर भिलाई नगर से आई लोह के समान, जिनके मन में दृढ़ता है, विश्वास है, और साथ ही सब में आशा के किरण भरने वाली सादगी जिनका श्रृंगार है और विनम्रता ही जिनका व्यवहार, ऐसी परम आदरणीय आशा दीदी जी हमारे बीच है। आज हम सभी के बीच भी एक नई उम्मीद और एक नई आशा जगाएंगे, और इसी उम्मीद के साथ हम सभी जोरदार तालियों से आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते हैं।
ओम शांति। जगत नियंता परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, आदरणीय मोहन भाई साहब तथा सभा में तथा मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्माननीय भाई तथा बहनें, और आप सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, बहुत देर से हम सभी हमारे विद्वान वक्ताओं के विचार सुन रहे हैं। मैं तो सिर्फ दो शब्द में आपको यही सुनाऊंगी कि हमारा न्यू एरा कैसा होगा। एरा हीरे जैसा होगा, बहुमूल्य होगा, और उसके लिए अपना विजन भी हमें बहुत श्रेष्ठ और ऊंच बनाना होगा, क्योंकि जो हमारा विजन होता है वो इनबिल्ट होता है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हालात हो, लेकिन अगर मेरा विजन बहुत श्रेष्ठ है, ऊंचा है, तो वो सदा ही स्मृति में रहता है और उसके अनुसार ही हम हर कर्म करते हैं। तो हमें जो इस स्थान पर, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस परिसर में जो हमें ये सुअवसर मिला है, हम अपना ऐसा विजन बनाएं, ऐसा श्रेष्ठ विजन बनाएं, जिस विजन के अनुसार हम श्रेष्ठ कर्म करते रहें। तो आप सभी भाई बहने जो इस स्थान पर आए हैं, आप एक परमात्मा के बच्चे हैं, साथ साथ परमात्मा के आप स्टूडेंट हैं। आप सिर्फ सुनने के लिए नहीं आए, लेकिन आप पढ़ने के लिए आए हैं, और पढ़ करके अपने को ऐसा ईश्वरीय स्टूडेंट बना लें, और आप ऐसा अपना विजन बना लें जो इतना श्रेष्ठ हो, और हम सब मिलकर के ऐसा नया विश्व, नया युग बनाए, नया भविष्य बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का, बहुत ही सुंदर बात हम सभी के सामने विजन के रूप में रखी। हम जानते हैं बचपन में सबसे ज्यादा सवाल कौन सा पूछा जाता है हमसे, बड़े होकर बेटा क्या बनोगे, यही पूछते हैं ना। पर बड़े होकर पता चला कि हमें फिर से बच्चा ही बनना है, और आज दीदी ने हम सभी को कहा कि यहाँ हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो दो तीन दिन के लिए भूल जाइए कि आप एक साइंटिस्ट हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, और सिर्फ बच्चे बन जाइए और यहाँ का पूरा आनंद लीजिए, सीखिए, समझिए और समाइए और भरपूर होकर जाइए। तो दीदी ने हम सभी को बच्चा बना दिया है, तो दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया इस स्मृति को हमें दिलाने के लिए। कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में
मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे इस विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर भ्राता नरेंद्र पटेल जी को। हमारे बीच दिल्ली से हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर पीयूष भाई भी हैं, जो बहुत से गेस्ट को हमारे बीच लाए हैं और कुछ मैसेजेस भी गेस्ट के हैं, पर समय हो चुका है, इसलिए आदरणीय पीयूष भाई नेक्स्ट सेशन में हमें उनके जो भावनाएं हैं, जो उनके मैसेजेस वो सुनाएंगे। नरेंद्र पटेल भाई, हम सबकी तरफ से सभी का दिल से शुक्रिया अदा करेंगे।
ओम शांति। बहुत ही सुंदर सी एक कॉन्फ्रेंस जो कि साइंटिस्ट इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स विंग की ओर से यहाँ पर रखी गई, जो कि हमारी लाइफ को एक प्रेरित करती हुई लाइफ ओरिएंटेड कॉन्फ्रेंस है, जिसका मेन थीम, अम्ब्रेला थीम जो था, न्यू विजन फॉर न्यू एरा, उसका इनॉगरल सेशन में हमारे समक्ष बहुत सारे महानुभवों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो सभी का धन्यवाद करते हुए मैं इतना कहूँगा कि हमारे पास में जैसे ब्रिज मोहन भाई जी ने भी कहा कि नई दुनिया बनाना जो है उसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ मेंटेनेंस करके ही इसे पुराने को नया बनाए, लेकिन पहले एक पुरानी दुनिया खत्म होकर के नई बननी है, जो कि विजन हमें स्वयं परमपिता परमात्मा ने दिया हुआ है। ऐसे परमपिता परमात्मा का भी मैं यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ, भ्राता ब्रिज मोहन भाई जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे इनॉगरल सेशन में संजीव कुमार जी ने जो एड्रेस किया है, जिन्होंने खास कहा कि एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखनी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, और हमें जीवन के अंदर में एक ऑनेस्टी को अपनाते हुए हार्ड वर्क करते रहना है। बहुत बहुत आपके विचारों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ब्लेसिंग्स के लिए हमारे चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी का भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर राहुल प्रशांत जी, जिन्होंने खास कहा कि हमारा बाह्य रूप से तो बहुत सारी प्रगति हम करते जा रहे हैं, लेकिन आंतरिक जगत की ओर भी हमें कुछ प्रगति करते हुए उसे भी टटोलना होगा और हमारे जीवन के अंदर में कुछ परिवर्तन ला करके हम सभी मिलकर के एक नई दुनिया, न्यू एरा प्रस्तुत करें। उसके लिए अभी जो पर्यावरण बिगड़ा हुआ है उसको भी रिस्टोर करते हुए हमें कार्य करना है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे मोहन भाई मोहन सिंगल जी, जो कि हमारे साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग के चेयरपर्सन है, बहुत ही उमंग उत्साह से भरे हुए हैं, बार बार कुछ न कुछ नया नया करते रहते हैं, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। वे कहते हैं कि हमेशा साइंस और स्पिरिचुअलिटी का दोनों को मिलकर के कुछ कार्य करना होगा, जब तक दोनों मिलकर के कुछ कार्य नहीं करेंगे न्यू एरा का आना कुछ भी संभव नहीं है। बहुत बहुत फिर से धन्यवाद आपका। हमारे नेवील जी ने, जो कि यूके से पधारे हैं, अपना मेडिटेशन एक्सपीरियंस प्रस्तुत करते हुए जो कुछ हमारे सामने प्रस्तुत किया, हम सभी को प्रेरित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके आने से ही एक इंटरनेशनल टच इसी कॉन्फ्रेंस को मिला हुआ है। और आशा दीदी जी को, जिन्होंने खास कहा कि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा बनाए, जिससे हम सभी मिलकर के नई दुनिया हम ऐसी धरा पर ला सके, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे अभी डॉक्टर सविता बहन जी, जिन्होंने हम सभी को अंतर जगत की यात्रा करवाई, बहुत ही थोड़े समय के लिए भी भले हो, लेकिन हम सभी को अंतर जगत की यात्रा करवाई, जो स्पिरिचुअलिटी के आधार से ही हम एक नई दुनिया बनाने जा रहे हैं, उनको अंतर जगत की यात्रा कराने के लिए बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद है। हमारे भारत भूषण भाई जी, जिन्होंने खास ये कहा कि हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाना है, हमारे अंदर में एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और उसके लिए ही स्पिरिचुअलिटी, स्वीटनेस एंड सेल्फलेस सर्विस को अपनाना है। अगर ऐसा करेंगे तो हम नई दुनिया को इसी धरा पर ला सकेंगे। आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। पीयूष भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप यहाँ पर लग करके सभी के डिग्निटीज के कुछ जो उद्गार है इसी प्रति वो भी लेकर के आए हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत ही सुंदर रूप से माधुरी बहन का, जिन्होंने इसी स्टेज को बहुत ही सहज रूप दिया हुआ है, सहजता से पूरे ही कार्यक्रम का संचालन किया है, माधुरी बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सुमधुर जो गीत यहाँ प्रस्तुत किया मधुरवाणी ग्रुप, तो उनका भी बहुत धन्यवाद है। नृत्य पेश करने के लिए संबलपुर की कुमारियों का भी धन्यवाद है, और लाइट डिपार्टमेंट, साउंड डिपार्टमेंट, वीडियो डिपार्टमेंट जिन्होंने भी, और बैकग्राउंड में जो स्टेज पर जिन्होंने भी कार्य किया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे अधिक धन्यवाद तो आप सभी का है, आपने अंत तक यहाँ पर रहते हुए पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर बहुत ही ये सुंदर सा रूप दिया हुआ है। जरूर से आप यहाँ पर तो आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनी है न्यू एरा के बारे में, और हम आपने ये भी ख्याल किया होगा कि हम जरूर से इसी न्यू एरा को इसी धरा पर लेकर के आएंगे, ऐसी एक शुभ भावना लेकर के यहाँ से जरूर से जाएंगे। आप सभी का भी धन्यवाद है। लेकिन यहाँ पर तो एक सुंदर सा माहौल है, जैसे आगे भी यहाँ पर बताया गया कि भविष्य में नई दुनिया आएगी, ऐसा नहीं है, नई दुनिया यहाँ पर ही न्यू एरा है ही है। इसी प्रकार से यहाँ तो इसी माहौल में तो आपको लगता है, लेकिन जब आप वहाँ पर अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि इतनी सारी कठिनाइयाँ मुश्किलें आती रहती है, तो उसमें फिर से वही बात को पकड़ करके रखना डिफिकल्ट है। तो मैं एक शेर उसके लिए पेश करना चाहूँगा कि क्या हम कर सकते हैं। कहते हैं कि जिंदगी एक सफर है, आराम से चलते रहो, उतराव चढ़ाव तो आएंगे, बस गियर बदलते रहो। ओम शांति। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद है। स्टेज पर मंचासीन मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
सभी का दिल से धन्यवाद करने के लिए नरेंद्र भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पहले भी बताया कि हमने एक बहुत सुंदर ग्रुप बनाया है, जिस ग्रुप का QR कोड यहाँ पे आपको शेयर किया था। आप जरूर उसको QR कोड को आप स्कैन करें और इस ग्रुप में जुड़े, आपको रेगुलर विजडम्स मिलते रहेंगे। हमारे बीच हमारे गेस्ट हैं। मैं आदरणीय भाई साहब से, आदरणीय दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे माननीय अतिथियों को गिफ्ट शॉल और प्रसाद प्रेजेंट करेंगे। बस 2 मिनट हम सभी बैठेंगे, क्योंकि हम उस सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता जिसकी प्रेरणा से हम सब यहाँ हैं, उनका धन्यवाद किए बिना कैसे उठ सकते हैं। हम सभी तालियों से आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी हम 2 मिनट के लिए, जो आपके बिल्कुल राइट साइड में बैठे हैं वो सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता, उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने पूरा सेशन हमारे साथ अटेंड किया, और यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे, उन्हें अपने साथ भोजन पर लेकर जाएंगे, क्योंकि आप इतनी देर से बैठे तो उन्हें भी तो भोजन की आवश्यकता है। आप भोजन खाएं और उन्हें छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। हम उन्हें साथ लेकर जाएंगे, साथ ही रखेंगे हर समय। और जैसा कि हमने संकल्प किया कि हम जो भी भोजन आदि करेंगे अपना ग्रैटिट्यूड उसके प्रति शेयर करेंगे और तभी ग्रहण करेंगे, तो दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अगला सेशन हमारा 4 बजे है,
तो मुझे उम्मीद है आप 4:15 बजे सभी वापस इस हॉल में आ जाएंगे। ओम शांति। बैठेंगे 2 मिनट, शिव पिता का धन्यवाद करके ही उठेंगे सभी।
अशांति का अंधेरा जा रहा, शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा। देखिए शिव ज्ञान सूरज वो उदय, देखिए शिव ज्ञान सूरज वो